ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। सब आनंद में है? आनंद में है? थके तो नहीं? वाह, इस सुनहरी शाम में आप सबका आज के इस सत्र में दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। कहते हैं फलों में नारियल का बहुत महत्व है, श्रीफल का बहुत महत्व है, खाने में, भोजन में स्वाद का बहुत महत्व है, और देशों में भारत देश का अपना बहुत महत्व है, ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान का अपना बहुत महत्व है, और समाज में बहुत सारे वर्ग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उसमें विशेष प्रशासनिक सेवा प्रभाग का अपना महत्व है। आप सब पिछले दो दिनों से, सभी माननीय हमारे मेहमान, ज्ञान सरोवर जो अरावली की सुंदर वादियों के बीच बना हुआ एक आध्यात्मिक परिसर है, यहाँ पर बहुत ही आनंद से, सुख से आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा में कहीं सराबोर हो रहे हैं। प्रकृति पति परमात्मा द्वारा दिया जाने वाला आध्यात्मिक ज्ञान और माँ प्रकृति की बारिश, दोनों में आपका मन सराबोर हो रहा है, ऐसा है? आप सब ने यहाँ बहुत कुछ पाया है, प्राप्तियाँ की हैं। मुझे उम्मीद है आप सब यहाँ से बहुत भरपूर होकर जाएंगे। ये दो दिन आपके जीवन के, कहना चाहिए, बहुत ही अलौकिक, अद्भुत और आनंददायक दिन है। सब सहमत हैं? सहमत हैं सभी? वाह। और इन दो दिनों में जो भी यहाँ हमने सीखा और ये कॉन्फ्रेंस के जरिए जो हमें एक नया नजरिया मिला है, एक नई सोच मिली है सेवा भाव की, उसी सत्र को हम लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस का ये सुंदर समापन सत्र है, इसकी शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। तो आइए एक नई ऊर्जा के साथ, खुशियों के साथ, बड़े ही उमंग उत्साह के साथ हम इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ अपने आज के मेहमानों को मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के हमारे सम्मानित अतिथियों को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ मैं राजयोगिनी आदरणीय त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हमारी सम्माननीय आशा दीदी जी को सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हाँ दीदी, दीदी के लिए जोरदार तालियां बजती रहें। थैंक यू। दीदी की उपस्थिति ही हम सब के लिए बहुत मायने रखती है। दीदी जी मंच पर पहुंच रहे हैं। अभी मैं आज के समापन सत्र के जी, आज के हमारे इस समापन सत्र के चीफ गेस्ट आदरणीय देवी भ्राता, भ्राता अवधेश प्रताप सिंह जी, मैं आपको भी मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी विधानसभा गवर्नमेंट ऑफ एमपी भोपाल से हमारे बीच पहुँचे हैं, आपको भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी कीनोट स्पीच के लिए आदरणीय देवी भ्राता सीताराम मीना जी। आप उत्तर प्रदेश से हमारे बीच हैं, रिटायर IAS ऑफिसर हैं और आध्यात्म के कई वर्षों का आपका आध्यात्मिक जीवन रहा है, तो मैं आपको भी मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता ए के धीर साहब IRS, आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गुड़गांव से हमारे बीच पहुंचे हैं। भाई साहब आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर एस मुखोपाध्याय जी, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट से हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका भी मंच पर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी देवी भ्राता ब्रह्मा कुमार हरीश भाई जी, जो इस पूरी कॉन्फ्रेंस के सूत्रधार हैं। आपका भी मंच पर जोरदार तालियों से अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। मंच हमारा सज चुका है। कहते हैं खूबसूरत से एक पल का एक किस्सा बन जाता है, जानी कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिससे कभी ना बिछड़ने वाला एक रिश्ता बन जाता है। और कुछ इसी तरह से आध्यात्म के साथ हम सब का एक रिश्ता यहाँ जुड़ा है। इन दो दिनों में आप सब ने एक परमात्मा के साथ एक रिश्ते का, एक रिलेशन का अनुभव किया है। और उन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। हमारे मंच पर बहुत ही प्रबुद्ध और प्रवीण हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं। और आप सब जानते हैं कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर की उपस्थिति में उनके आह्वान से की जाती है। तो आइए कुछ पलों के लिए उस प्रभु की याद में चलेंगे।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज फल कर ले।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
अवतरित होकर
भारतीय संस्कृति हम सब के अंग अंग में रची और बसी है। और भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है अतिथि देवो भव। इसी संस्कृति का निर्वहन करते हुए हम मंचासीन सभी अतिथियों का सम्मान करने के लिए अपनी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हमारी सभी मेहमानों का खुशबूदार फूलों के गुलदस्तों से और वेजेस के द्वारा स्वागत करें। कहते हैं अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आश पूरी होती है, जिनके आने से आश पूरी होती है। तो हमारी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी का स्वागत हो रहा है। आप सब अपने स्थान से भी स्वागत की इस सनातन संस्कृति का निर्वहन कर सकते हैं।
Thank you.
भ्राता राजयोगी हरीश भाई जी का स्वागत सत्कार हो रहा है। तरफ हो खुशियों की लहर सभी अतिथियों के लिए मैं कहना चाहूंगी, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, बरसे आप सब पर असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके ओठों पर सदा मुस्कान रहे, सदा मुस्कान रहे। और इन्हीं शुभ भावनाओं को, स्वागत की बेला को और आगे बढ़ाने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और स्वागत के बोल अपने शब्द सुमन के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा यहाँ रखें। उनके मन में भी स्वागत के भाव हैं जो अपनी मधुर वाणी में प्रस्तुत करेंगी ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन जी।
ओम शांति। पिछले 2-3 दिन में आप सभी इस प्रभु परिवार के बीच में जो रह रहे हैं, जरूर परमात्मा के साथ आपकी प्रीत पहले से कई गुना बढ़ गई होगी, बढ़ गई है। और हो सकता है आपने परमात्मा को अपना मीत भी बना लिया हो। तो ये गीत स्वागत का तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपके हृदय का गीत मैं अपनी आवाज देने का प्रयास करूंगी इस गीत के माध्यम से। हो सकता है ये आपका दिल भी गुनगुना रहा हो, तो जरूर गीत के साथ साथ आप भी गुनगुनाने का प्रयास करें। दिलों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफा भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफा भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है, जाता है नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफा भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने प्रभु, तुमको मीत बनाने से। याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करे हम योग बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से तूफा भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। पहले प्रभु से प्रार्थना करते थे, अब उनकी से हम बात करते हैं।
दुख के दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले, दुख के दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले, जीत हार या फूल खार हो जितना खाए हिचकोले, सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम, देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु तुमको मीत बनाने से, झरनों से संगीत है झरता पत्थर के चकराने से, तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से प्रभु तुमको मीत बनाने से, हाँ प्रभु को मीत बनाने से, हो तुमको मीत बनाने से।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपा बहन जी, इतनी सुंदर भावनाएं आपने प्रकट की, तूफान भी तोहफा बन जाता प्रभु को मीत बनाने से। एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे भाई बहन बहुत पीछे पीछे बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं, थोड़ा दूरी लग रही है, आप सब चाहें तो नजदीक आ सकते हैं, नजदीक आने से प्रेम और बढ़ जाएगा। ये ईश्वरीय प्रभु परिवार है, इसलिए कोने कोने में जो बैठे हुए हैं सभी नजदीक आ जाएं। थैंक यू जो आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्वागत का सिलसिला चल रहा है, हमारे मनचाहसीन मेहमान और आप सबका ज्ञान सरोवर की वादियों में प्रभु की तरफ से हमारी अव्यक्त मूर्त दादियां, हमारी वरिष्ठ दीदियों की तरफ से जो दिल की दुआएं, जो स्नेह, जो प्यार, जो सम्मान, जो सत्कार आप सब पा रहे हैं, आप सबको वो अद्भुत अनुभूति हो ही रही होगी। और इस स्वागत की बेला को और आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गुलमोहर डिवाइन ग्रुप भोपाल की नन्ही नन्ही बहुत प्यारी प्यारी परियों को, जो आकर आप सबका दिल से स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। गुलमोहर डिवाइन ग्रुप, स्वागतम सत स्वागतम। थैंक यू कुमारी यशस्वी और कुमारी राधा, ये दोनों कन्याएं बचपन से ही ज्ञान में हैं, रोज ईश्वरीय ज्ञान को सुनती हैं और इनके मन के भाव आप सबने जानी। ज्ञान सरोवर के आध्यात्मिक परिसर में आना अपने आप में जीवन की एक महत्वपूर्ण वेला रही है। आप सब महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके जीवन के ये परिवर्तन की बेला रही है, जिसके आधार से हम सब ने आध्यात्मिक नजरिए को समझा है और आध्यात्म हमें सिखाता है सुप्रशासन की बहुत ही सहज कला। हम सब आध्यात्म से जुड़कर अपने कर्मेंद्रियों पर पहले स्वयं ही राज्य करके स्वप्रशासन से एक कुशल प्रशासन, सफल प्रशासन और सुप्रशासन की नींव रख सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसी शक्ति के बारे में हम सब ने बहुत ही विस्तार से यहाँ जाना समझा है। आध्यात्म के बारे में मैं तो कहना चाहूँगी कि आध्यात्म जीवन का सार सिखाता है। आध्यात्म जीवन का सार सिखाता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है, अपने आप का परिचय कराता है आध्यात्म, विश्व एक परिवार बनाता है आध्यात्म। और आध्यात्म की महिमा आप सुनेंगे हमारे आज के कीनोट स्पीकर आदरणीय देवी भ्राता सीताराम मीना जी के द्वारा। आपका पिछले 25 वर्षों का आध्यात्मिक जीवन का सफर रहा है। हाँ, आप तालियां जरूर बजा सकते हैं। हमारे भ्राता श्री 25 वर्षों से लगातार आध्यात्म के पथ पर चलकर अपने जीवन को मूल्यवान और देवी गुणों से सजाकर मानवता की सेवा में भी अपना समय प्रति समय देते हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आपकी महिमा क्या कहें, आप लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर भी रहे हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में आप कमिश्नर भी रहे हैं और भी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर, जिम्मेवार पदों पर अपनी सेवाएं देते हुए आध्यात्म के साथ आपने समन्वय करके अपने जीवन पथ को बहुत ही सरल और सहज बनाया है। तो मैं सम्मान के साथ आपसे कहूंगी कि आप पधारें और अपने जीवन के अनुभव के आधार से आज का विशेष वक्तव्य रखें। भ्राता जी सीताराम मीना जी।
ओम शांति। ये संबोधन बहुत प्यारा संबोधन है, इसको बहुत प्यार से बोल सकते हैं, ओम शांति। और वैसे तो अब आपको लगभग 2.5 दिन यहां पर हो गया है और कुछ आत्मा का परिचय भी हो गया है, लेकिन इस संबोधन में भी अपने आप का परिचय है। ओम यानी मैं आत्मा और शांत तो शांति यानी शांत तो है। तो एक बार फिर महसूस करते हुए, इसको अंदर से अनुभूत करते हुए एक बार फिर से बोलिएगा ओम शांति। धन्यवाद आप सभी का। आज अरावली पर्वत के सर्वोच्च स्थान और गुरु शिखर के ही पास में इस ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड के बहुत ही सुंदर और मनोरम प्राकृतिक छटा से पूर्ण इस परिसर में आज के मंचासीन सभी विद्वत्जन और अनुभवी महानुभाव, साथ ही साथ सम्मुख बैठे हुए भारत और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों प्रदेशों से आए हुए परमात्मा की प्रिय संतान भाइयों और बहनों, आप सब भी बहुत ही अनुभवी विद्वत्जन और कुछ जिज्ञासु भी आप में हैं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन, गुड इवनिंग। ये एक खास तौर से जो जैसे जब यहाँ पर परसों उद्घाटन सत्र हुआ था तो पूछा गया था कि कितने लोग पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, तो पहली बार आने वालों के लिए तो विशेष तौर से मैं कहूँगा कि उनके लिए विशेष तौर पे, बाकी हम सब के लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि स्वयं परमात्मा पिता निराकार शिव पिता परमात्मा के द्वारा साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापित इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आप पधारे हैं, जहां पर प्रकृति तो आप सबका स्वागत पिछले ढाई दिनों से कर ही रही है, साथ ही साथ यहां का जो आध्यात्मिक स्पंदनों प्रकंपनों वाइब्रेशन से भरा हुआ वातावरण है और उसमें जो भी आप सुन रहे हैं, इतने जो सेशंस आपने अटेंड किए हैं उनसे बहुत कुछ तो महसूस हो ही गया होगा, लेकिन मैंने जो अपने पिछले 23-24 वर्ष में अनुभव किया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता वास्तव में दैवीय गुणों, जीवन मूल्यों, नैतिक मूल्यों, चारित्रिक गुण और विशेषताओं और मानवीय मूल्यों का एक समागम कॉम्बिनेशन है जो निस्संदेह रूप से जाति, वर्ण, भाषा, देश यानी नेशनलिटी के भी लेवल से ऊपर उठकर पूरे विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो आधार है वो शारीरिक आधार ना होकर आध्यात्मिक आधार है यानी आत्मिक आधार है, और उस आधार पर ही ये तो आप लोग अभी ढाई दिन में जो नए हैं उनमें से भी जो पुराने हैं वो तो जानते समझते ही हैं, वो भी समझ गए होंगे कि हम वास्तव में आत्मा हैं, और आत्मा तो लिंग भेद से भी ऊपर है क्योंकि वही आत्मा मनुष्य शरीर में, पुरुष शरीर में भी और स्त्री शरीर में भी कभी भी प्रवेश कर सकती है, जा सकती है, जन्म ले सकती है, तो उस हिसाब से आध्यात्मिकता लिंग भेद से भी ऊपर उठकर हम सबको विश्व भ्रातृत्व भावना वर्ल्ड फ्रेटर्निटी का संदेश देती है क्योंकि हम सबके सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सिखाया समझाया जाता है वो हमने जो महसूस और अनुभव किया है वो वाकई में बहुत ही अद्भुत और निराला है, जो कभी पहले कल्पना और सोच में आ ही नहीं सकता था वो बहुत कुछ यहाँ पर सीखा जाना है। हम जो चीजें बहुत कुछ पढ़ते 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 यहाँ विद्वान भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं उनको भी नहीं जानते थे, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रथम सेशन में ही हम वो चीजें जान जाते हैं जो वाकई में हमें पूरे जीवन को बदलने वाली है, और जिसको जानना बहुत जरूरी है वो है आत्मा का परिचय। और उसके बाद में आत्मा का संबंध उस परवरदिगार परमपिता परमात्मा से क्या है और कैसे क्या उनसे हमें प्राप्तियां होती हैं, वो उसके बाद में हमारे मन में विचारों में और हमारे रहन सहन में हमारे जीवनचर्या में वो धीरे धीरे समाता चला जाता है, और उसके आधार पर हमारे जीवन में कुछ वो चीजें अपने आप समाती जाती हैं, अपने आप शामिल होती जाती हैं, जिनको हम पहले समझते थे कि ये तो बहुत कुछ आइडियलिज्म के लेवल की बात है, यूटोपियन है, यानी अति आदर्श है, जो व्यावहारिक रूप में जीवन में दैनिक दिनचर्या में हम शामिल नहीं कर सकते, अपने व्यवहार में जिसको शामिल नहीं कर सकते, लेकिन वो चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। प्रशासन शासन क्या है, वो भी यही तो है कि हम जो कुछ करें उसको सबके सब जितने भी लोग उससे संबंधित हैं लाभार्थीजन हैं, और लाभार्थीजन प्रशासन शासन में तो पूरे सामान्य जन ही होते हैं, टोटल पब्लिक होती है उसमें, तो वो उनको स्वीकार्य है, और उनको स्वीकार्य वही चीजें होती हैं जो जीवन मूल्यों आदर्शों विशेषताओं गुणों से संबंधित होती हैं। मैं एक एक चीज और एक एक उन गुण विशेषताओं या शासन प्रशासन के लिए क्या आवश्यक है उनका नाम ना लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आध्यात्मिकता के आधार पर वो सारी चीजें हमारे जीवन में हमारे रोजाना के दिनचर्या में और हमारे रोजमर्रा के कार्य में हमारी कार्य शैली में हमारे कार्य व्यवहार में और हमारे जीवन में स्वाभाविक तौर पर प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से शामिल हो जाती हैं, और उस तरह से हम जब प्रशासनिक कार्यों का संपादन करते हैं उनका निर्वहन करते हैं तो वो करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। परमात्मा जो पूरे विश्व को चलाता है वो किन सिद्धांतों के आधार पर इस विश्व को चला रहा है वही हमें यहाँ पर सिखाया जाता है, और उन सिद्धांतों उन मूल्यों उन विशेषताओं को जब हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं कार्य प्रणाली में भी शामिल कर लेते हैं तो प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन ड्यूटीज का संपादन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान और सरल हो जाता है। हमारे जीवन में निष्पक्षता धैर्यता सत्यता ईमानदारी हर एक व्यक्ति के दुख कष्ट परेशानी को समझने की संवेदनशीलता उसके प्रति एक रहम का भाव एक क्षमा का भाव और उसको स्वीकार्य करने का तरीका और पद्धति वो स्वतः आ जाती है जिससे कि हम अपने कार्यों को और अधिक कुशलता से कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने निर्णयों में भी जब हम परमात्मा के मेडिटेशन के आधार पर और इस राजयोग की शिक्षा के आधार पर आगे काम करते हैं तो वो निर्णयों को लेना भी हमारे लिए ज़्यादा सरल और ज़्यादा आनंददायक हो जाता है, और यहाँ तक कि उन निर्णयों की स्वीकार्यता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा की सिखाई हुई वैल्यूज और शिक्षाएं उसके पीछे बल प्रदान करने वाली होती हैं। तो मैं अपने प्रशासनिक जीवन के दो अनुभवों को आपके साथ में इसी संबंध में थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। उस वक्त मैं शासन में वित्त सचिव के तौर पर तैनात था, हमारे प्रमुख सचिव भी हमारे से ऊपर थे, तो वित्त विभाग के अधिकांश कर्मचारियों अधिकारियों का ये एक कहना होता था कि सर वित्त विभाग का जो काम है वो थैंकलेस वाला है और हमारे ऊपर आरोप ही ज़्यादा लगते हैं, हमें प्रशंसा कम मिलती है। और उसमें भी खास तौर से कि हमारे वित्त विभाग की कोई फाइलें नहीं होती, आमतौर पर अन्य विभागों की पत्रावलियां होती हैं जिन पर वित्त विभाग अपनी राय देता है, अपनी टिप्पणियां करता है और जिसके आधार पर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो इस तरह से बार बार बहुत बार ये चर्चा होती थी। एक दिन ऐसे ही हम प्रमुख सचिव महोदया के कक्ष में थे और उसमें स्टाफ भी था, अधिकारीगण भी थे, तो यही बात फिर से आई और वो कहने लगे कि सर हम जो निर्णय वहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो राय देते हैं, सब कुछ पूरा कुछ लगा करके पूरे शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ वो टिप्पणियां करते हैं, राय देते हैं, फिर भी ज्यादातर निर्णय हमारे राय के विरुद्ध आ जाते हैं, तो उसका क्या करें? हम तो बहुत परेशान होते हैं। कभी कभी ऐसे निर्णय भी आ जाते हैं जिनका क्रियान्वयन करना लगभग मुश्किल जैसे होता है। तो ऐसे ही बात चल रही थी तो मैंने प्रमुख सचिव महोदया को कहा, मैडम इसका हमें स्पिरिचुअलिटी में एक सॉल्यूशन नजर आता है। हम परमात्मा से जो शिक्षाएं लेते हैं तो वहां पर हमें कुछ एक इस तरह के टिप्स, जैसे आज अभी इस सेशन से पहले मंत्रा की बात हो रही थी, तो वो मंत्र जैसे सिखाए जाते हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो उससे हमें बहुत कुछ अपने कार्य में सुख और संतोष मिल सकता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मीना बताइए क्या है। मैंने कहा कि हमें शिक्षा देते हैं कि आप जब अपना रोल करते हो तो बालक और मालिक, मालिक और बालक, उस रोल को समझते हुए काम करें। कि ये बालक मालिक क्या है हमारे तो समझ में कुछ नहीं आया, इसको और स्पष्ट करिए। तो मैंने स्पष्ट किया कि परमात्मा हमें जो शिक्षा देते हैं उसमें यही है कि जिस समय हम अपनी राय देते हैं, अपनी वित्तीय टिप्पणी अंकित करते हैं किसी भी फाइल पर, या जब आप मंत्रिमंडल की बैठक में या माननीय मंत्री जी के सामने या माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाते हैं तो वहां पर जो भी कुछ मौखिक रूप से राय देती हैं, उस वक्त हमें ये देखना सोचना होता है कि जो भी कानून नियम प्रक्रिया और वित्तीय स्थिति, हमारा फंड फ्लो वगैरह है और विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के तहत जो आवश्यकता और उसके लिए फंड्स अलोकेशन की बात है, वो सारी चीजें अगर हम पूरी तरह से उसमें अंकित कर देते हैं या बता देते हैं तो वो हमारा रोल है एज एन अथॉरिटी, यानी मालिक, एक राजा का। तो उस वक्त हमें जो कुछ कहना है, जो कुछ बताना है, अपनी जो राय देनी है, जो लिखना है, वो स्पष्ट रूप से क्लियर सारा कुछ कर दें। और उसके बाद में जो निर्णय हमें लेना होता है उसमें तो वहां पर भी वी आर द अथॉरिटी, और उस अथॉरिटी के तहत जब हम निर्णय करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि निर्णय का स्तर हमारे से ऊपर है, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या माननीय मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, तो वो जो निर्णय लेते हैं उनके लिए हम पूर्ण रूपेण जिम्मेदार फिर नहीं होते। उस समय हमें अपने एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाना चाहिए और उस रोल को हमें समझना चाहिए कि नाउ वी आर द एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट दिस डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कैबिनेट और द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। कि ये तो कहने में तो बड़ा सरल है लेकिन इसको कैसे करें? कि इसको करने के लिए हमें पहले अपनी आंतरिक शक्ति भी बढ़ानी होगी। वो कहने लगे, कई उसमें उदाहरण देने लगे कि मान लीजिए कि उसमें ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो ऐसी दशा में क्या करें? कि जैसे मान लीजिए फंड ही नहीं है और कैबिनेट ने निर्णय ले लिया कि इस कार्यक्रम में, इस योजना में, इस प्रोजेक्ट को ये पैसा दिया जाए, तो मैंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में हम दोबारा फंड्स फ्लो की और उसकी स्थिति को देखते हुए पुनर्विचार के लिए भी उसको भेज सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि फिर भी निर्णय हमारे मंतव्य, हमारे एडवाइस, हमारे जो टिप्पणी की है उसके हिसाब से नहीं है, उसके खिलाफ है, उसके बाद में फिर हमें, हमारे पास में कुछ और ज्यादा स्कोप नहीं रहता, देन वी मस्ट एक्सेप्ट दैट डिसीजन लाइक ए चाइल्ड, एक बालक की तरह फिर हमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर किस तरह से कहां से हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या और कुछ करना है, या किसी और योजना से मान लीजिए कटौती करनी करानी है तो उसके लिए भी फिर दूसरे विभाग से और उनसे बात करके और आगे उसमें कार्रवाई की जा सकती है। कहने का मतलब है कि प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों सभी को अपने रोल को भी स्पष्ट तौर पर समझने की आवश्यकता है और वो स्पिरिचुअलिटी में हमें इसको बहुत आसान और सहज तरीके से सिखलाया जाता है। साथ ही साथ उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें उसके लिए हमें शक्ति मेडिटेशन के द्वारा मिलती है। मेडिटेशन से हम उसको सारी शक्तियों को अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं जिससे जो कुछ हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे अंदर मनोबल और आत्मबल वो पूरा बढ़ जाता है। एक दूसरा उदाहरण है, उस वक्त हमारी पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में थी एज एडिशनल CEO और साथ ही साथ जिसको आज यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, ये उस वक्त ताज एक्सप्रेसवे के नाम से बनना शुरू ही हुआ था, उसकी कुछ कार्य शुरू हुए थे, जमीन का उसमें अधिग्रहण हो गया था, अलाइनमेंट पूरा करीब करीब फाइनलाइज हो रहा था, उसके कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, उनकी शर्तें, बहुत सारी चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा था और मेरे पास में एडिशनल चार्ज उसका था CEO के तौर पर यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी। उसी के संबंध में शासन में एक मीटिंग हुई 21 दिसंबर को। उस मीटिंग के बाद में सारे अधिकारीगण आपस में बात कर रहे थे तो शासन के अधिकारीगण खासतौर से वो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मैं उसमें एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था लेकिन मैं उनकी बातों को सुन रहा था। तो वो सब यही बात कर रहे थे कि जो कुछ डिसीजंस लेने हैं, क्या होना है, क्या करना है, वो हायर लेवल पर सारे के सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, हमें तो केवल मात्र उसमें अपनी सहमति दे देनी है, अपना छाप यानी अपना ठप्पा लगा देना है, अपने उसको सहमति के हस्ताक्षर कर देने हैं उस निर्णयों को। और ये जब बात हो रही थी तब अंदर ही अंदर मेरे अंदर विचार चल रहे थे, कोई किसी तरह का और न प्रार्थना कुछ और, लेकिन विचार चल रहे थे अंदर ही अंदर। और उन विचार श्रृंखलाओं में पहला विचार तो यही आया कि अगर यहां पर इस तरह से हो रहा है तो हायर लेवल के डिसीजंस तो आमतौर पर जबानी तौर पर मौखिक तौर पर कम्युनिकेट होते हैं, उनका कोई राइटिंग में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। उन निर्णयों को क्रियान्वित करने कराने के लिए जितने भी जो भी कुछ पेपर्स साइन होंगे वो तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर मुझे ही करने पड़ेंगे, तो अगर उनमें कहीं पर कोई इररेगुलरिटी खासतौर से फाइनेंशियल इररेगुलरिटी हुई तो उसमें सबसे पहला बलि का बकरा सीताराम मीना बनने वाला है। तो अंदर ही अंदर एक थोड़ा सा द्वंद सा चला कि ये तो बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कि यहां से तो फिर ट्रांसफर करवा लेना चाहिए और मुझे किसी न किसी हायर ऑफिसर से मिल करके, चीफ सेक्रेटरी साहब से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM या अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी से उनसे मिल करके रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए ट्रांसफर की। लेकिन उसी वक्त फिर जो है दूसरा विचार आया कि ये तो एक मैदान छोड़ करके जाने वाली बात हुई और दूसरी बात ये भी हुई कि मैं जाकर के वहां पर रिक्वेस्ट करूं। और फिर उसी विचार श्रृंखला में ही विचार आया कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा की संतान हूं और जब परमात्मा का बच्चा हूं वो तो दाता है, दाता का बच्चा किसी के आगे जाकर के भिखारी बने और भीख मांगे कि मेरा ट्रांसफर यहां से कर दीजिए, मोटे मुझे हटा दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, ये भी ठीक नहीं लगता, तो फिर क्या होगा। तो फिर अंदर ही अंदर विचार चला कि मुझे या तो परमात्मा जो है कोई ना कोई उस तरह का टचिंग देंगे कि जिसमें जहां कुछ गड़बड़ होने वाला है वो ठीक हो जाए, या उसको मैं देख लूं समझ लूं और उस पर वहां पर रुक जाऊं, या फिर परमात्मा जैसे ठीक समझेंगे। ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद में उसी दिन का हमारा वापसी का टिकट था, मैं वापस आ गया नोएडा और उस वक्त तो नहीं लेकिन 25 तारीख को पेपर्स में देखा कि मेरा वहां से ट्रांसफर होकर के डिविजनल कमिश्नर मुरादाबाद डिवीजन के तौर पर हो गया है। तो कहने का यहां पर मतलब है कि ये मेडिटेशन की एक शक्ति है और मेडिटेशन इतना इजी है, ये मुश्किल भी नहीं है। मेडिटेशन में क्या है, हमारे जो भी संकल्प चलते हैं, हमारे जो भी विचार चलते हैं, अगर वो निष्पक्ष हैं, निस्वार्थ हैं और सबकी भलाई के हिसाब से हैं, तो परमात्मा उनको सबसे पहले रिसीव करता है और वो हमारा पिता है, तो वो उसमें फिर हमें मार्गदर्शन भी करता है, हमारी रक्षा भी करता है और आगे उसमें कार्रवाई भी करता है। तो यानी मेडिटेशन इज नॉट सो डिफिकल्ट और इसमें कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं करना, सिर्फ अपने को आत्मा समझ करके और उसको याद कर लेने की बात होती है और अपनी बात उनको कह देने की होती है, उसके बाद में सारा काम उनका हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब। आपने अपने 25 साल के जीवन का, आध्यात्मिक सफर का अनुभव बहुत कम समय में हम सबके साथ शेयर करने की कोशिश की। मेडिटेशन का महत्व आपने बताया और आध्यात्म से जो हमारे जीवन में वैल्यूज आती हैं, दिव्य गुणों की जो हमें एक खान मिल जाती है, वो आपने बताया, और कैसे हमारे प्रशासनिक सेवा पद पर रहते हुए वो वैल्यूज जीवन में हमें मदद करती हैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत दिल से हम आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, आदरणीय देवी भ्राता AK धीर साहब। आप IRS हैं, गुड़गांव से हमारे बीच पहुंचे हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आपको मैं सम्मान के साथ बुला रही हूं और एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, सभी समय का ध्यान रखते हुए इस समापन सत्र को हम पूरा करेंगे। तो जोरदार तालियों से हम सुनेंगे आदरणीय देवी भ्राता AK धीर साहब को। भ्राता जी,
ओम शांति। अमनचा सिंह, आदरणीय सभी महानुभाव एवं हॉल में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ इस समय इस हॉल में मौजूद हैं, क्योंकि पूरे संसार में कितनी आत्माएं, कितने लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे, लेकिन हम यहाँ ये ज्ञान वर्षा सुन पा रहे हैं और अपने में आत्मसात कर पा रहे हैं। मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूँगा। मैं आशा दीदी, विद्यात्री दीदी, अशोक भाई जी, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया, क्योंकि प्रशासनिक पद पे समय निकालना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारी छोटी छोटी आवाजें हमारे पीछे चलती हैं, क्या यार इतनी दूर जाना है, फिर 3 दिन लगाने पड़ेंगे, एक छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, तो ये सब ओवरकम करके यहाँ तक आना, और इसके बाद बहुत ही अच्छा यहाँ पे हर सेशन बहुत ही शानदार रहा और हर नई चीज़ें सीखने को मिली, पुरानी रिनोवेट हुई, जो आगे हमारी जो सर्विस में काम आएंगी। मेरा इस डिपार्टमेंट में 34 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, इससे पहले मैं 2 साल बैंक में भी रहा। मेरा बस एक यही मानना है कि हमें कुछ नया ज्ञान अगर सीखना है तो पुराना जो प्याला है, जो चाय का कप भरा हुआ प्याला है, वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा होता है, पीछे छोटी आवाजें चलती हैं, व्हाट्सएप पे ज्ञान वर्षा होती है, सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है और वो सारा दिन चलती रहती है। कुछ तो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें किसी ने नया मोबाइल लिया, उसके पास ज्ञान आ गया, तो वो सोचता है भी इसको मैं बांटूं फटाफट, इसको मैं कहीं ना कहीं बांटूं, तो वो उसको डाल देता है, हालांकि वो ज्ञान हमें पहले भी मिल चुका होता है तो बड़ी इरिटेशन होती है, लेकिन इन्हीं सब चीजों को ओवरकम करना है तो कैसे करना है ये सब मेडिटेशन से ही सिखाया जाता है और इसी से ही संभव है। मैं पिछले 12 वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा दूसरी बार माउंट आबू आना हुआ। पिछली बार मुझे याद है जानकी दीदी दादी से भी हमें आशीर्वाद मिला था, वो दिन आज भी मुझे भूलता नहीं है। मैं पहले तो यहाँ अकेला आने की सोच रहा था, फिर मैंने अपनी वाइफ से बात की तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी कि आप तो यहाँ ये सेशन सुनोगे मैं क्या करूँगी। मैंने कहा नहीं, मेरा मैं बीच बीच में निकल जाया करूँगा बाहर, दोनों घूमने चलेंगे। तो वो एक मेरा एक उनको लाने का बहाना था, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको भी इतना अच्छा लगा कि वो बहुत कुछ उन्होंने सीखा और लाइफ के बारे में जो नहीं पहले कर पाते थे और सोच पाते थे वो सब चीज़ें एक नई परिप्रेक्ष्य में सीखने को मिली। और अपना सबसे बड़ा जरूरी बात हुई कि एक इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि यहाँ से ज्ञान जो हम ले जाते हैं उसको आत्मसात करें, उसको अपने से मैच करके देखें क्या हमारे लिए फिट है क्या नहीं है। ये सब चीज़ें हम सबके लिए बहुत जरूरी हैं। मेरे लिए तो ये ब्रह्म कुमारी का जो ज्ञान है, मेडिटेशन है, जो भी बातें हैं जो दीदियों की, वो एक लाइट हाउस की तरह काम करती हैं। जब भी मैं कभी किसी दुविधा में फंस जाता हूँ, अभी एक किस्सा छोटा सा शेयर करता हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई एक ऑफिस में जिसमें मेरा टोकन यूज हुआ। मतलब हमें वो यूज करने के लिए देना पड़ता है अपने अपने जो सबोर्डिनेट्स हैं, अदरवाइज तो कोई काम हो नहीं पाएगा, फेथ करना पड़ता है। पर कुछ ऐसा हो गया कि कुछ गलतियां हो गई और माइंड पे बड़ा प्रेशर चलता रहा, FIR लॉज करानी पड़ी, सब उनके अगेंस्ट करना पड़ा, अपने लोगों के अगेंस्ट ही। ये सब महीना हो गया चलते चलते, डेली वही काम। फिर कुंद्रा भाई जी आए घर पे तो उन्होंने भी कहा कि सेंटर पे आप जाया करें। तो मैं ऐसे ही एक दिन सेंटर पे 57 सेक्टर 57 गुड़गांव चला गया, और उससे पहले एक हफ्ता पहले उनके साथ भी गया था। तो बाबा के रूम में बैठा, उनको सब बातें बड़े दिल से कही कि मुझे कोई रास्ता दिखाएं, कुछ सोल्यूशन करें। मैंने तो जो करना था वो कर लिया। तो बस 10-15 मिनट के बाद ही थोड़ा मैंने हल्का फील किया और अगले दिन जाके कुछ इसका सोल्यूशन मिला और एक एक करके पॉजिटिव स्टेप्स होने शुरू हो गए। तो ये सब एक अंदर की बातें हैं जो आप फील करते हैं बाबा से कह के, पूरे दिल के साथ आप सरेंडर करते हैं तो आप भी ये सब चीज़ें पा सकते हैं। दो लाइनें, जैसे हम ये जीवन हमारा एक छोटा जीवन है, उसी में ही हमने से आधे से ज्यादा तो मेरे ख्याल में बीत चुका है और थोड़ा सा बाकी बचा, और इसी में जो बाकी बचा हुआ है, अब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, लेट प्राप्त हुआ, लेकिन जितना अब समय है उतना हम और ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को प्राप्त करें और इसके साथ आगे बढ़ें, अपनी लाइफ आगे स्मूथ करें, औरों को भी अपने फैमिली मेंबर्स को भी हम इसमें साथ लेके चलें। दो लाइनें मुझे संतोष हरण जी की याद आती हैं जो कुछ कुछ मिलती जुलती हैं, शायद आपके दिल को भी टच करें, मैं पेश करना चाहूँगा। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तो ये जो दो पल, तालियां बजा सकते हैं अगर बजाना चाहे तो, ये जो दो पल हैं ये वही हैं, एक पल बीत गया एक बाकी है, थोड़ा सा उसमें समय चुराना है, उस थोड़े से पल के लिए जितना हम कोशिश कर सकते हैं, अपने पास के सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ से लाइट हाउस का काम वो हमारे लिए करेगा। मैंने अपने इस 12 साल के अनुभव में डॉक्टर गिरीश पटेल जी को सुना, डॉक्टर प्रेम मसन जी को भी सुना, पहले भी सुना था इनको, और शिवानी दीदी को बहुत सुनता हूँ, वीडियो देखता हूँ उनको। अभी सन सिटी स्कूल में प्रोग्राम हुआ था गुड़गांव में, तब उनको लाइव सुना। बहुत अच्छे हैं ये लोग, मतलब मोटिवेट करते हैं कहीं अंदर से। इनको थोड़ा सा भी सुन लें, इनको सुन लें बस एक बार। और दीदियां तो यहाँ जितने भी लेक्चर हुए बहुत ही जानदार थे और बहुत ही अंदर से हमें एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मजबूर करते हैं कि हाँ ये सिचुएशन तो मेरी भी है, मेरे लिए भी कुछ रास्ता निकलता है। तो वही बातें हैं कि जैसे हम अब पेट्रोल पंप पे गाड़ी पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं, या अब आने वाले समय में कार चार्जिंग के लिए जाया करेंगी इलेक्ट्रिक स्टेशन पे, वैसे ही हम अपने माइंड को ब्रेन को चार्ज करने के लिए सेंटर जरूर जाया करें, हर हफ्ते जाएं तो चार्जिंग वहाँ से मिलेगी, थोड़ी मिले थोड़ी थोड़ी करके ज़्यादा मिलेगी। जितनी हमारी बैटरी स्ट्रांग होती जाएगी, बड़ी बैटरी होती जाएगी, उतनी हम चार्जिंग ज़्यादा ले पाएंगे। और हमें इस आजकल के नेगेटिविटी वाले माहौल में चार्जिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जैसे हम रोज खाना खाते हैं शरीर के लिए और डेली नहाते हैं बॉडी को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए, फील गुड करने के लिए, उसी तरह ये मेडिटेशन भी बस वो छोटी सी वही ट्रिक है कि इसको करें, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। हमारे जैसे सरकारी ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में हम लोग आजकल, एक नई बीमारी चली है कि ग्रुप्स बन गए हैं बहुत सारे, सीनियर ऑफिसर जितने भी हैं वो उनका स्टाफ जो उनके नीचे वाले वो ग्रुप पे मैसेज डाल देते हैं, सर ने ये कहा है ये रिपोर्ट घंटे में आ जाए बस फटाफट, और उसके नीचे वाला मीडियम वाले वो हम हो गए, हम भी फिर उसमें वो घंटे की बजाय उसको आधा घंटा करते हैं, या एक दिन उन्होंने कहा है तो आधा दिन करेंगे, और उसी टाइम फटाफट मीटिंग बुलाए कहेंगे सर ने ऊपर से फोन आया ये चाहिए, ये डाटा चाहिए, और उसमें से काफ़ी कुछ हमारे लिए रिलेवेंट होता ही नहीं है। अगर वो चाहें बुद्धिमान प्राणी, श्रेष्ठ प्राणी जिनको पिरामिड पे बिठाया गया है उच्च यहाँ पे, तो उनके ऑफिस में भी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनके सिस्टम में अवेलेबल है, पर कोई कष्ट नहीं करेगा, कोई तकलीफ नहीं करेगा उस चीज को पढ़ने की भी। नीचे धक्का मारो तो तुम भी नीचे कर दो, नीचे क्लरिकल बाबू के पास जाएगी, वो फिर उसको कंपाइल करेंगे फिर भेजेंगे। एक और बीमारी नई चली है आरटीआई, एक आरटीआई आ जाती है, वो आरटीआई आप भी ये देखते होंगे क्योंकि सारे हमारे प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो आरटीआई कोई रिलेवेंट नहीं होती और वो पूरे डिपार्टमेंट में फैल जाएगी, सारे डिपार्टमेंट में नीचे तक आ जाएगी। जैसे कभी कभी आती है कोई सिरफिरा कहीं रद्दी इकट्ठी करने के लिए उसने डाल दिया, जी फिल्मी एक्ट्रेस के अगेंस्ट कितने कितना बकाया है, उसके लिए डिपार्टमेंट क्या क्या कार्रवाई कर रहा है। अब हमारे गुड़गांव में या हिसार में या रिवाड़ी में, इनमें तो कोई फिल्मी एक्टर नहीं रहते हैं, पर वो वहाँ भी आएगी, वो भी रिप्लाई देगा भाई यहाँ कोई नहीं रहता है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन नील समझी जाए। तो इस तरह की एक ये चल पड़ी हैं, खैर डिपार्टमेंट इसको ठीक करेगा। और एक व्हाट्सएप के बारे में छोटी सी याद आ रही है कि हमारे एक सीनियर कुलीग हैं, वो सुबह सुबह 5:45 पे एक ज्ञान डाल के भाग जाते हैं, मतलब एक ज्ञान डाला उन्होंने, बहुत उत्तम ज्ञान होता है हिंदी में और मोटिवेट हमें करता है, पर उनसे फिर सारा दिन कोई बात नहीं हो पाती। हम कोई ज्ञान डाल लें उसके लिए ना अंगूठा दिखाते हैं ना फूल बेचते हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, बस उनका है कि भाई मेरा ज्ञान सारे पढ़ लें और मैं मेरे लिए कुछ वाह वाह करें, अंगूठा दिखाएं या फूल भेजें या फोन करें, और ये भी एक चला हुआ है। तो कुल मिला के बस यही मेरी आज यहाँ आने का और अपना अनुभव शेयर करने का और आपको एक मोटिवेट करने का यही है कि अपना शरीर हमारा स्वस्थ रहे और हमारा ब्रेन हेल्दी रहे, नेगेटिविटी से दूर रहें, और ये हम मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ा सा योगा भी, एक्सरसाइज भी, प्राणायाम भी करें, ये बहुत ही बढ़िया होगा। और इसके लिए दो लाइनें मैं पेश करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, झिलमिल झिलमिल दिख रहा वो दीपक दूर नहीं है, झिलमिल झिलमिल दिख रहा वो दीपक दूर नहीं है, थक कर तुम बैठना जाना अब मंजिल दूर नहीं है। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, इतनी सुंदर भावनाएं। जिंदगी एक प्यार का नगमा है, दो पल की कहानी है। ये दो पल क्यों ना हम सुकून और शांति के साथ व्यतीत करें। दो पल की जिंदगी के लिए इतनी भाग दौड़, भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा, सवेरे से शाम तक इसी तरह से कुछ हमारी कहानी चलती है। मैं तो कहूँगी आप सबके जीवन में 100 पल मौज हो, 1000 पल शांति हो, कभी जीवन कमल तो कभी रोज हो। मेरे भाई बहनों ऐसा आप सबका हर रोज हो, आप सबका ऐसा हर रोज हो। जीवन उलझनों से समस्याओं के बीच में भी खिला हुआ कमल हो, ऐसी शुभ भावनाएं आप सबके प्रति। और अभी मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आज के सत्र के गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय देवी भ्राता एस मुखोपाध्याय जी। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट से हमारे बीच पहुंचे हैं। आप भी अपनी शुभकामनाएं और अनुभव हम सबके साथ शेयर करेंगे भ्राता जी।
मंचासीन आदरणीय आशा दीदी, रीना दीदी, भ्राता हरीश, मंचासीन अति विशिष्ट गुणीजन एंड सभागृह में जितना गुणीजन उपस्थित है सभी को मेरा नमस्कार। इसके उपरांत मेरा हार्दिक प्रार्थना भी है ओम शांति, जो सभी का आज का इस सभागृह में सभी लोग बोलना चाहते हैं, दिल से बोलना चाहते हैं ओम शांति। साथ साथ धन्यवाद भी देना चाहते हैं आज मेरा जो अनुभव है ये बताने का मौका देने के लिए, इस मौका पाने के लिए भी हम बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं। हम बोकारो भिलाई से आए हैं, भिलाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक संस्थान है, भिलाई शहर में रहते हैं, उसी का सबस्टेंसर में समय समय से हम आमंत्रित होकर जाते हैं, वहीं से हमको आज ये ज्ञान सरोवर में आना हुआ, प्रथम बार आना हुआ। हम विशेष शारीरिक अस्वस्थता से गुजर रहे थे उसी टाइम कोई एक प्रोग्राम में हम भिलाई सब सेंटर में गए भी हैं। वहाँ का सब सेंटर के दीदी बोले जी आप एक बार जाइए ज्ञान सरोवर में जाइए, तो उसी टाइम हम इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मेरा इस बार प्रथम बार आना है। लेकिन जैसे कि आदत है, हम सभी का आदत है, और भी लोग जो लोग और भी उच्च पद में आसीन हैं उन लोग को, सभी लोग को अपना सराउंडिंग को कंट्रोल करने का आदत है खुद को छोड़ के, तो ये आदत से हम भी ग्रसित थे। हम गए सब सेंटर में, हम तो जाएंगे नॉर्मली कहीं जाते हैं तो पता करते हैं कहाँ रहेंगे, किस फ्लाइट से जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, कौन होटल में रुकेंगे, तो हम जाके पूछे हम जाएंगे हम कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे। हमको वहाँ का सबसेंसर का दीदी बताया जे आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना पिता का घर जाते हैं जैसे ऐसे ही जा रहे हैं, उसमें जैसे आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ जाना है। तो उसी भरोसा के साथ हम जब यहाँ पर पहुँचे तो ज्ञान सरोवर में जब प्राथमिक उद्बोधन हुआ, उद्बोधन अनुष्ठान में डॉक्टर पाठक बताया, मुसीबत यह नहीं है जे हम समय से ख़त्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुसीबत यह है जब हम समय से शुरू नहीं करते। प्रसंग कुछ अलग था लेकिन हम जब सुन रहे थे तो हमको लगा जब हम समय से शुरू करते तो मेरा शायद ये सब मुसीबत नहीं भी होता, हम समय से ज्ञान सरोवर आ नहीं पाए। लेकिन बेटर लेट देन नेवर हम ज्ञान सरोवर में पहुंचे हैं, और इस दो दिन जैसे कि बताया अपने ही गृह में रह के अपनापन एहसास किए प्रतिपल, इसी इस ज्ञान सरोवर में जब आए हैं उसमें विभिन्न जो कार्यक्रम चला सब दीदी लोग सब फैकल्टी लोग बताया, मेरा पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुआ, जैसे कि बताया जे अप्लाइड फिजिक्स होते हैं अप्लाइड फिजिक्स होते हैं, हम अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अप्लाइड फिजिक्स में ही किए हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स से पास करने के बाद हम अप्लाइड फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम जब विभिन्न संस्थान में जुड़े हैं तो हम अप्लाइड फिजिक्स से पास करने के बाद हम गए थे, सभी लोग गए थे, तब मेरा कम उम्र था, हम एक मिशन में गए थे, रामकृष्ण मिशन में गए थे, यहाँ पर एक सेशन में विवेकानंद जी का श्रेष्ठ संतान होने का चर्चा भी किए थे, तो सब लोग महाराज के पास बैठे थे, हम लोग जस्ट पास ही किए थे, बोले थे कैसे बनना है, जिंदगी कैसे बिताना है, चलना है, तो उस टाइम बताया जे सब लोग तो पढ़े हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन आज आप लोग को हम बताते हैं ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। तो ये शिक्षा वहाँ पर दिया है, देने के बाद हम तो ये सीख के चले आए, जैसे कि अवेयरनेस एंड एक्शन का एक आज सेशन भी था, जान तो गए लेकिन अपना क्रम में आज विभिन्न सेशन में बताया जो आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, 0 से 10 तक अंकित करिए, वो करते हुए भी हम बीच बीच में पा रहे थे जब हम अपने प्रति भी बहुत ऑनेस्ट नहीं है, जो नंबर दे रहे हैं वो भी कभी सही नहीं दे रहे थे। तो ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इवन इट इज इफ इट इज नॉट द ओनली पॉलिसी, वो भी हम कहाँ दिनचर्या में चलते हुए सराउंडिंग्स को कंट्रोल करते हुए खो जाते हैं। मेडिटेशन का तरह तरह बात बताया सिखाया, जानते बहुत पहले से थे, फिजिक्स का बात बताया गया, जहाँ फिजिक्स का सीमा शेष होता है मेटाफिजिक्स शुरू होता है, इसका भी बढ़ाया गया है बताया गया है। हम एक पढ़े थे जैसे स्टीफन हॉकिंस, हम लोग मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स पढ़ते रहे हैं, वो महाविस्फोट का बात बताया, बिग बैंग का बात बताया, कैसे सृष्टि अपना यूनिवर्स तैयार हुआ, उसके बाद बताया कृष्ण गहवर ब्लैक होल का रहस्य कैसा है, बताया हॉकिंस रेडिएशन के बारे में। ये पढ़ते पढ़ते अचानक एक दिन हम कुछ अद्वैतवाद भी पढ़ रहे थे, उसमें बताया जे ब्रह्मो त्रिगुणातीता है, इसमें ये परमेश्वर का परम शक्ति का बात कर रहा था, ये त्रिगुणातीत इट इज नॉट क्वालिटी इट इज डायमेंशन, द 3 dimension इज स्पेस बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन, इसी ऑलमाइटी के साथ साथ कहीं ना कहीं मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन जुड़ा हुआ है, एक क्रिएशन जुड़ा हुआ है। तो ये पार्ट अत्यंत सहज तरीका से इस दो दिन में हम लोग सभी सीखे हैं, इस परम पिता का, इस सृष्टि का बारे में, अपने बारे में, अपना सृष्टि के बारे में, हम कौन हैं इसके बारे में ये सीखे हैं। तो ये चलते चलते अपना जीवनचर्या में एक कहानी बोल रहे हैं, समय का ध्यान रखते हुए भी ये कहानी हम बहुत कॉलेज में पढ़े थे, शेयर करना चाहते हैं, कुछ मोनोटोनी भी दूर हो जाएगा। यह है, यह एक विदेशी मैथोलॉजी का कहानी है, उसमें ये अपना सारे सभी लोग जो इतना उच्च पदासीन है, हो सकते सभी के लिए सत्य भी होगा, एक महान योद्धा था, वो सब जिंदगी का सारा युद्ध जीत गया था, एक युद्ध जीतने के बाद उसका घर में, निजी घर में एक फंक्शन था, उसका बेटी का शादी था, तो बेटी का शादी, इतना बड़ा योद्धा है, इतना मान्य व्यक्ति है, उसका बेटी का शादी में बहुत समागम था, बहुत अतिथि था, चारों तरफ लोग था, तो अचानक उसका जो अति निकट जन था उन लोग सुन रहा है, इस महान योद्धा रो रहा है, अंदर से आवाज आ रहा है, किसी को प्रार्थना कर रहा है, बोलता तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम हमको एक दिन दे दो, तो बोला नहीं, तुम्हारे पास हर दिन नहीं बचा। बोला देखो कल मेरा बेटी का शादी है, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं एक दिन हमको दे दो। तो बोला नहीं, तुम तो तुम्हारा जिंदगी का 10 दिन हमको दे दिया जब तुम उस जीत जीता था, तुमको हम वो जीत जिता दिया थे। जब तुम वो जीत युद्ध जीता था तुम अपना जिंदगी का 1 महीना हमको दे दिया था, और जब तुम उस कठिन युद्ध को जीता था अपना जिंदगी का 1 साल तुम हमको देता था। आज तुम्हारे पास कुछ दिन बचा नहीं, 24 घंटा भी बचा नहीं। तो तुम्हारा बेटी का कल शादी है, लेकिन तुम्हारा संचय में अब कुछ नहीं है, ना मेरे पास देने के लिए है। एम्बिशन, ये जो बताया जे अपना स्ट्रेस अपने ऊपर कैसे बढ़ाते रहते हैं, ये हम बचपन में ही पढ़े थे, हम जब कॉलेज में थे तभी पढ़े थे। लेकिन चलते चलते कहाँ खो गए, भूल गए, अपना पालन नहीं कर पाए। करते करते उसी एम्बिशन में लोग आगे बढ़ते गए, अपना कहीं काम किए, कहीं प्रगति करते रहे, प्रोफेशनल जेलसी आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रेस डेवलप कर लिए, कंट्रोल करते रहे सारा लोग को, सराउंडिंग्स को, मेरे साथ जो भी रिलेटेड है, लेकिन खुद को कंट्रोल करने कभी भूल गए। इसके बीच में सभी खराब भी नहीं है, हम जहाँ थे वो बनाते हैं, जितना इंडियन रेलवेज का सारा रेल है हम लोग इतना रेल बनाए उसको लंबा सजाए तो चांद तक भी पहुँच जाएगा। ये इस कंपनी रेल बनाया, इस कंपनी लोहा बनाता है, जो लॉन्च पैड है रॉकेट का वो बनाता है, वो विशेष गुणवत्ताशील लोहा होता है, बनाता है INS विक्रांत जो वर्शिप है उसका लोहा। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग का ये जो प्रजन्म है बहुत एक खराब समय भी देखा है, समय देखा है उस महामारी का, जिस टाइम सारा देश के लिए ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है, लेकिन उस टाइम हम लोग को सारा प्रोडक्शन स्लो डाउन कर दिया गया था, पूरा भारत में ही कर दिया गया सारा इंडस्ट्री को। लेकिन उस टाइम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, कोई बगल से चले जाता था तो इतना दूर हट जाते थे सब लोग को, उसी टाइम बहुत निकट लोग को खो भी दे हैं, बहुत दोस्त जिसके साथ कल बात करते थे उसको खो दिए हैं, तो सब लोग विशेष सतर्कता लेने के लिए भी। लेकिन जब ऑक्सीजन जरूरत पड़ा तो इस कंपनी के लिए लगभग 33,000 टन ऑक्सीजन पूरा देश में बनाया। ये ऑक्सीजन हमको जरूरत पड़ता है लोहा बनाने के लिए, वेसल स्टील बनाने के लिए, उस टाइम हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन बनाए नहीं, ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए इवन हम लोग जो फ्यूल सिलेंडर है उसको भी निष्क्रिय करके उसमें भी ऑक्सीजन भर के सप्लाई किए थे। तो हम लोग जैसे चैलेंज कितना भी बड़ा है पढ़ाए गए थे, चैलेंज को हम लोग ओवरकम कर सकते थे, चाहते हैं, मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो किए भी हैं। आज हम ये पाठ लेके जा रहे हैं जे स्वशासन का, पूरा कोशिश करेंगे आज के बाद से अपने को कंट्रोल करने के लिए, शायद बाकी सब अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मेरा शुभेच्छा सभी के लिए है, सभी को मेरा फिर से प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपनी शुभेच्छा रखी और भावनाएं रखी कि यहाँ से हम अपने अंदर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर लेकर जाएंगे जो हमें राजयोग से भली भांति प्राप्त हो सकती है। एक छोटी सी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक जंगल में आग लग गई, गर्मी के दिन थे, कुछ ऐसा हुआ तो सारे जंगल में आग लग गई। आग फैल रही थी, चारों तरफ बढ़ती जा रही थी, और जब आग बढ़ने लगी तो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु पशु पक्षी सब कोई थे, सब जंगल से बाहर की ओर भागने लगे। सब कोई भाग रहे हैं, जंगल से बाहर की ओर जा रहे हैं। उसी जंगल में एक पेड़ पर नन्ही सी चिड़िया रहती थी, बहुत नन्ही सी चिड़िया। उसने क्या किया, जब देखा चारों तरफ आग लग रही है तो गई और कहीं से अपनी चोंच में पानी लेकर आई और आग को बुझाने लगी। फिर गई, फिर पानी लेकर आई और आग बुझाने लगी। कई बार उसने ऐसा किया। कुछ जंगल के ऐसे पशु पक्षी थे जो ये सब कुछ देख रहे थे और उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे। कहा, तुम्हारे इतने से पानी से कोई जंगल की आग बुझने वाली है? आप यकीन करिए, चिड़िया ने इतना सुंदर जवाब दिया। कहा, देखो, मैं जानती हूं कि मेरे थोड़े से प्रयास से पूरे जंगल की आग तो नहीं बुझ सकती, लेकिन कभी याद किया जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा कि जंगल में आग लगी थी तो भागने वाले कौन थे और बुझाने वाले कौन थे, तो शायद बुझाने वालों में मेरा नाम लिया जाएगा। हाँ, जोरदार तालियां बजा सकते हैं उस चिड़िया के प्रयास के लिए। उस नन्ही से चिड़िया ने इतना सुंदर प्रयास किया, उसके मन की इतनी सुंदर भावनाएं। अगर आज हम सब के अंदर इतनी सुंदर भावनाएं जाग जाएं और इस समाज के परिवर्तन के लिए वो सेवा भाव, वो समर्पण भाव, वो परिवर्तन का भाव आ जाए, तो हम सब मिलकर अपने इस भारत देश को नहीं बल्कि सारे संसार को एक स्वर्णिम संसार, एक सुखद संसार में परिवर्तन कर सकते हैं। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच आज के सत्र के चीफ गेस्ट आदरणीय देवी भ्राता अवधेश प्रताप सिंह भाई साहब उपस्थित हैं। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी विधानसभा गवर्नमेंट ऑफ एमपी भोपाल से हमारे बीच पहुंचे हैं और आप अपनी धर्मपत्नी जी डॉक्टर प्रतिमा सिंह बहन जी के साथ पहुंचे हैं। आपका भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारे अवधेश प्रताप भाई साहब जी बहुत ही, मैंने उन्हें कई वर्षों से भोपाल में सेंटर पर आते हुए देखा है, बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही इस कॉन्फ्रेंस की शान है। और हमारी खुशकिस्मती है कि भाई साहब आज के इस सत्र के विशेष मेहमान हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ कहूंगी कि आप भी अपनी शुभकामनाएं, अपना वक्तव्य हमारे बीच रखें भ्राता जी।
सुप्रीम प्रशासक को स्मरण करते हुए आज के इस अंतिम सत्र के लिए, समापन सत्र के लिए, और ये दो दिन में जो हम सभी ने प्राप्तियां की हैं, उसके इस आयोजन की प्रमुख सूत्रधार और एडमिनिस्ट्रेटर्स की इंस्पिरेशन, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उसकी हेड, और ओआरसी दिल्ली की डायरेक्टर राजयोगिनी आदरणीय आशा बहन जी, इस कार्यक्रम में कीनोट स्पीकर रहे, वरिष्ठ प्रशासक रहे आदरणीय देवी ब्रदर सीताराम मीना जी, इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर यहां उपस्थित गुड़गांव से आदरणीय ए के धीर साहब एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, भिलाई से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय एस मुखोपाध्याय जी, इस कार्यक्रम को हम सभी को आमंत्रण देने और कई कड़ियों को संजोने और संभालने वाले हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय बी के हरीश जी, और बहुत ही सुंदर ढंग से जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं जोनल कोऑर्डिनेटर हैं एडमिनिस्ट्रेटर बिंग की, और भोपाल में बहुत ही अच्छे ढंग से देवी सेवाओं का विस्तार कर रही हैं ऐसी आदरणीय बी के डॉक्टर रीना बहन जी, और यहाँ सदन में उपस्थित मेरे सभी साथी एडमिनिस्ट्रेटर्स और देवी बहनों। निश्चित तौर पर ये जो रिट्रीट थी या जो कॉन्फ्रेंस थी और इसके जो टॉपिक रखे गए बहुत ही सामयिक और हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मैं देख रहा था सॉवरनिटी की बात करें, सेल्फ सॉवरनिटी की, तो वो भी बहुत उपयोगी जीवन मूल्य है। स्पिरिचुअलिटी तो है ही, आध्यात्मिकता जीवन मूल है ही, और सेवा भी जीवन मूल्य है। तो इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन यहां बनाया और इतने विभिन्न सत्रों के माध्यम से हमको बिल्कुल बांधे रखा गया और बहुत ही व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से जो सत्र रखे, उसके लिए मैं हृदय से आदरणीय आशा बहन जी और उनकी पूरी टीम को एडमिनिस्ट्रेटर्स की ओर से आभार व्यक्त करती हूं और धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हम लोगों को जो सत्र थे उसमें बहुत वैरायटी थी, ऐसा नहीं था कि मोनोटोनस थे कि एक ही तरह से हों, उसमें एक्टिविटीज भी थी, इंटरेक्टिव सेशंस भी थे और बहुत अच्छे ढंग से जो प्रेजेंटेशंस थे वो भी थे। तो हम लोगों ने बहुत कुछ इसमें सीखा है और जैसा मैं कह रहा था कि तीनों जीवन मूल्य भी हैं और हम सबके लिए बहुत उपयोगी भी हैं। तो सेल्फ सॉवरेनिटी हमने यहां सीखी। सेल्फ सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि आत्मसंप्रभुता। जैसा हम ज्योग्राफी में जानते हैं कि हमारा कंट्रोल खुद के ऊपर हो, हमारी टेरिटरी पर, वो सेल्फ सॉवरेनिटी है। तो हमने ये देखा कि भाई सेल्फ सॉवरेन हम हैं कि नहीं है। बहुत सारी चीजें हमने देखी कि हम सेल्फ सॉवरेन नहीं थे। सेल्फ सॉवरेन कब हो सकते हैं हम? जब हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज हमारे अंदर में हो, या हमारा कंट्रोल हमारी सेंसेस पर हो, आत्मसंयम हो, और जो आदरणीय बहन जी ने कहा था हम कर्मयोगी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, तो हम फिर सेल्फ सॉवरेन हो सकते हैं। लेकिन इसमें इंट्रूडर्स आते हैं, बहुत सारे अतिक्रमण जो करते हैं लोग, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, ग्रीड है, ये सारी चीजें जो आती हैं, ये जो बाहर से आती हैं, तो हमारी जो सेल्फ सॉवरेनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको बनाए रखने के लिए हमको यहां जो आपने सशक्तिकरण किया, जो एम्पावरिंग की, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। हम सब ने बहुत सारी चीजें यहां सीखी हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इसी तरह से आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता का अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन जो सरल डेफिनेशन है वो अपनी आत्मा का अध्ययन या अपने से स्वयं को आत्मा परमात्मा से जोड़ना, यह आध्यात्मिकता है। गीता में भी कहा है कि हमारा जो स्वभाव है उसको ही अध्ययन करना आध्यात्मिकता की श्रेणी में आता है। और कई ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अपने हिसाब से आध्यात्मिकता को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ लेता है वो अध्यात्म है, और उससे सीधे संबंध जोड़ने के बाद ईश्वर से सतत उसको संदेश प्राप्त होते रहें, रचनात्मक सुझाव प्राप्त होते रहें, वो आध्यात्मिकता है। तो मेरी दृष्टि में तो आध्यात्मिकता जीवन जीने की कला है, और इसको यदि हम अपनाते हैं तो अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और बहुत सारे जो स्ट्रेसेस हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो आध्यात्मिकता भी बहुत महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिसको हमने यहां सीखा है और हमको उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। अब सेवा तो निश्चित तौर पर हम सभी सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, सेवा भी एक जीवन मूल्य है और उसको हमको बहुत कर्तव्य के साथ उसको पूरा करना पड़ता है। सेवा की परिभाषा भी यही है कि जो कर रहा है उसको भी संतुष्टि हो, उसको भी प्रसन्नता हो, और जिसके लिए किया जा रहा है उसको भी प्रसन्नता हम दें, तो वो सही में सेवा मानी जाती है। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है कि विवेकानंद जी तो कई जगह अपनी स्पीचेस देते थे, जब वो लंदन एक स्पीच देने के बाद खड़े हुए और नीचे सारा उनका प्रोग्राम खत्म हो गया, तो नीचे खड़े थे वो लोग, शेक हैंड करते हुए जा रहे थे, तो एक ने कहा कि हैव ए नाइस डे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि बट हाउ कैन आई हैव ए नाइस डे, हाउ कैन। तो उसमें जो अंग्रेज था या जो फॉरनर था वो कोई रिप्लाई नहीं दे सका। एक मिनट उसने बहुत इंतजार भी किया, तो विवेकानंद जी ने कहा कि डू सर्विस एंड मेक अदर्स हैप्पी, दिस इज द ओनली वे टू हैव ए नाइस डे। तो ये जो चीज है, सेवा करने की बात है, वो हमको यहां सिखाई जाती है कि हम दूसरों की सेवा करें, उनको हम प्रसन्नता दे सकते हैं, यही प्रशासक का कार्य भी है। तो हमको अपने विस्तृत सोच के माध्यम से यदि हम जनता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, या जहां हम रह रहे हैं उसकी सेवा करते हैं, तो हम सच्चे उसके रूप में प्रशासक या शासकीय सेवक कहला सकते हैं। तो इस माध्यम से भी हम सेवा को अपने कर सकते हैं, और हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें तो हमको इस सारी जो वैल्यूज हैं इनका उपयोग करना ही है। तो सेवा के माध्यम से आप अपने जीवन में भी संतुष्टता ला सकते हैं और समाज में भी संतुष्टता ला सकते हैं। लेकिन सेवा कैसे की जाए, इसके कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन मैं तो एक सरल तरीके से प्रकृति से भी हम सीख सकते हैं कि कैसे सेवा हम आगे बढ़ा सकते हैं। पेड़ से हम सीखा जा सकता है कि हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, अपनी सेवा को पॉजिटिव ढंग से, सही ढंग से कैसे जिया जा सकता है, शासकीय सेवा के नाते भी हम कैसे उसको मूर्त रूप दे सकते हैं। अब पेड़ के मामले में यदि हम देखें तो वो जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा वो छाया देता है। संदेश उसका यही है कि प्रशासक का ओहदा या प्रशासक का पद जितना बड़ा हो उसका सेवा का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। उसी बड़ी सोच के साथ वो यदि समाज की सेवा करता है तो बहुत अच्छा मूल्य वो उसको दे सकता है। इसी तरह उसके पास यदि जब फल लगते हैं पेड़ में तो पेड़ झुक जाता है, यानी यदि आपके पास कोई उपलब्धियां हैं तो आपको झुकना चाहिए ताकि आप अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी आप अप्रोच कर सकें, उसकी भी आप सेवा अपने जो अधिकार है उसके साथ की जा सके। तो आपको झुकना चाहिए और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शक्तियां प्रशासक को मिलती हैं वो सेवा के लिए हैं, रौब जमाने के लिए नहीं है, ईगो बढ़ाने के लिए नहीं रहती हैं। तो ये मूल हमको अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री रह करके एक संतुलन के साथ सेवा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि वो जब वो पेड़ पुराना हो जाता है या पतझड़ आता है तो पत्तियों को वो झड़ा देता है और नई कोपलें फिर आती हैं, तो वो भी हमको एक संदेश देता है कि ये चेंज मैनेजमेंट है कि जब चीजें आए तो आप नए ढंग से नई चीजों को भी शुरुआत करिए, आप नवाचार करिए और दूसरे जो साधन है उसको अपनाइए और सेवा का जो कार्य है उसको आप और सशक्त बनाइए। तो इस तरह से आप सेवा के माध्यम से अपने जीवन को भी संतुष्ट कर सकते हैं और दूसरा जो आपका सेवा का कार्य उसको भी प्रभावी ढंग से और सही ढंग से उसमें कर सकते हैं। अब सेवा या हमारे जो प्रशासनिक मूल्य हैं वो चूंकि समाज में क्षरण हो रहा है मूल्यों का हम सभी जानते हैं, प्रशासक भी उसी उससे आता है, समाज से ही आता है, तो हमको इसकी सतत जब तक हम सशक्तिकरण नहीं होगा हमारा एम्पावरिंग नहीं होगी हम इन सारी चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो चीज दिखती है उसको तो हम पूरी तरह से सशक्त बनाते हैं, जैसे हमारी बॉडी दिखती है तो हम उसका पूरा जिम जाते हैं, आप योगा प्राणायाम करते हैं, उसको तो हम सशक्त बनाते हैं, लेकिन उस बॉडी को जो चलाने वाली चीज है उसको हम सशक्तिकरण नहीं करते हैं। तो हमारी जो आत्मा है या जो भी हमने जो सीखा है यहाँ उसका सशक्तिकरण ऐसे ही रिट्रीट के माध्यम से हो सकता है, ऐसी ही संस्थाओं के माध्यम से होता है। तो हमको सतत रूप से इससे जुड़ा रहना चाहिए ताकि हम अपना सशक्तिकरण कर सकें और यदि हम आंतरिक रूप से सशक्त होंगे तो ये सारे जीवन मूल्य हैं या हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हम संतुलन के साथ लॉ एंड लव के बैलेंस के साथ हम पूरा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी मैंने भी कई जगह अध्यात्म को और इसको अप्लाई किया है, क्योंकि अभी आदरणीय मीना जी मुख्यमंत्री और मंत्री की बात कर रहे थे फाइल के सिलसिले, तो मेरा एकदम मेमोरी रिफ्रेश हो गई कि मेरी डीलिंग तो क्योंकि मैं विधानसभा में हूं तो सारी डीलिंग की पब्लिक से नहीं है लेकिन ऐसे ही लोगों से रहती है जिनका ईगो बहुत हाई रहता है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण और प्रतिपक्ष के सदस्यगण। तो कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब आपको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो दो चीजें अभी मैं यहां विचार कर रहा था, अभी पिछले उसके सत्र की बात थी जो हमारा बजट सेशन था, तो हाउस ऐसा ही रहता है जैसा ये है, मान लीजिए विधानसभा ही है, यहाँ जैसे आदरणीय आशा जी बैठे ये स्पीकर की चेयर है, इसके नीचे मेरी चेयर रहती है और इधर फिर एक टेबल रहती है जैसे हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स बैठते हैं और राइट साइड में चीफ मिनिस्टर और जो ट्रेजरी बेंचेज हैं या पार्टी इन पावर वो रहती है और लेफ्ट में अपोजिशन रहता है। तो एक मुद्दे पर इशू ये बना कि पेपर में न्यूज आई कि जो माइल न्यूट्रिशन है उसमें बड़ा घपला हुआ है, सही ढंग से शासन ने कार्य नहीं किया है तमाम चीजें, तो अपोजिशन का पर्पज यही रहता है कि भाई इसको गवर्नमेंट को घेरा जाए। तो उन्होंने क्वेश्चन आवर में ही सबसे जो पहले हाउस शुरू होता है उन्होंने कहा कि नहीं इस पर पहले डिस्कशन कराइए उसके बाद ही हम कार्रवाई आगे चलने देंगे। तो जैसा रहता है स्पीकर ने कहा कि नहीं क्वेश्चन आवर के बाद फिर हम आपका मैटर लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। उस समय थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया हाउस, जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म हुआ एक घंटे के बाद अपोजिशन पूरा चिल्लाने लगा, खड़ा हो गया। अब गवर्नमेंट का ये रहता है कि चूंकि वो मीडिया भी उस समय एक्टिव रहता है तो जो ज्यादा हंगामा करता है या ज्यादा सेंसेशन पैदा करता है मीडिया उसको ज्यादा छापता है। तो जब अपोजिशन चल रहा था तो इधर से मिनिस्टर सारे चिल्लाने लगे, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो फ्लोर मैनेज करते हैं वो चिल्लाने लगे सारी चीजें, बड़ा हंगामा हाउस में होने लगा। अब इसी बीच में क्या हुआ कि जो रूल बुक होती है सारी कार्रवाई जो विधानसभा की चलती है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर से चलती है, तो छोटी एक पुस्तिका होती है, तो हम उन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे उन्होंने हमारे किसी ऑफिसर से कहा कि इसमें आप बताइए कैसे अभी डिस्कशन नहीं हो सकता, क्योंकि बजट सेशन होता है तो बजट और सारे डिपार्टमेंट्स पर चर्चा होती है तो उसमें हम इसको ले सकते हैं। तो वो रूल रिफर करने के लिए वो किताब लिए हुए थे। इसी बीच में इधर एक जो हमारा पीएम था वो घूम रहा था और सामने जो है लीडर अपोजिशन चिल्ला रहे थे, तो जैसे ही वो बात कर रहे थे उन्होंने रिफर किया तो इधर वो उन्होंने उसको हटाने के लिए या वैसे उन्होंने वो रूल बुक फेंक दी। अब उनका पर्पज एक्चुअली था डाइवर्ट करने का हाउस का, जैसे ही उन्होंने रूल बुक फेंकी तो वो उस पर थी, लेकिन वो हमारे टेबल के आगे उधर जाके अपोजिशन की साइड में वो गिरी, तो अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया कि जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स हैं उन्होंने लीडर अपोजिशन को सीधे किताब फेंक करके मारी। अब इतना हंगामा उसमें हाउस में हो गया और वो सब कहें कि भाई ये अनपार्लियामेंट्री जो है उनका कंडक्ट है और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स हैं, इनको देन एंड देयर उनको निलंबित करिए, हाउस से बाहर करिए, बहुत ज्यादा उन्होंने शोर मचाया। अब ऐसे में हमारा रोल, स्पीकर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बीच में बैठा हुआ था तो मैं थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि चीजें अपने आप भी सेटल डाउन हो जाती हैं, तो हमने कहा थोड़ी देर में, अब लीडर अपोजिशन मेरी तरफ देख रहा है कि ये क्या एडवाइस करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं, इधर मिनिस्टर्स और सारे लोग भी देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा कूल डाउन होकर मैंने कहा कि अब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना होकर के अपने ओरिजिनल पोजिशन में आता हूं, क्योंकि अब हंगामा करते हुए वो मेरी टेबल पे आ गए, सारा अपोजिशन इधर टेबल पे आ गया और इधर मिनिस्टर सारे चिल्ला रहे, वो चाहते थे कि अपोजिशन को डाउन करके हमारी बात पहले सुन ली जाए ताकि पेपर से ना छपे, चिल्लाते रहे वो, तो स्पीकर भी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। कई बार स्पीकर अपने एक्सपीरियंस ही भी ले लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी स्लिप बनाता रहा तो दोनों ने कहा कि आप क्यों नहीं एडवाइज कर रहे हैं कि वो एक्शन लीजिए, तो मैंने कहा मैं अभी बोलता हूं स्पीकर साहब को क्या कार्रवाई करनी, तो हमने उनको कहा कि आप इसको अब 10 मिनट के लिए हाउस एडजॉर्न कर दीजिए। मैं कूल माइंड से कहा, मैंने कहा अपने को पार्टी नहीं बनना है सो एडजॉर्न कर दी, तो उन्होंने 10 मिनट के लिए हाउस को एडजॉर्न कर दिया। अब दोनों, अमूमन ये होता है जब हाउस एडजॉर्न होता है तो स्पीकर के चैम्बर में दोनों पार्टियां जाकर डिस्कस करती हैं और कोई वे आउट निकल जाता है, तो अब ये तो गए जो सत्ता पक्ष था मंत्रीगण, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, किताब नहीं फेंकनी थी, ये अनपार्लियामेंट्री है और मैं इसके लिए वहां खेद व्यक्त कर दूंगा, सॉरी फील कर दूंगा, लेकिन अपोजिशन नहीं गया क्योंकि अपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया, उन्होंने कहा इसका कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट को घेरने के लिए, तो वो 10 मिनट हो गया, हाउस फिर रीअसेंबल हुआ लेकिन वो हंगामा वही फिर जारी रहा और बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा भी म्यूनिसिपल जो हमारे मंत्री थे कि भाई मेरे से गलत हो गया वो और मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन मैंने लीडर अपोजिशन पे नहीं फेंकी थी, एक कोई आदमी वहां खड़ा था उसको हटाने के लिए मैंने इशारा किया, उसमें मेरी किताब छूट गई, लेकिन अपोजिशन को सुनना ही नहीं था, वो आकर के मेरे टेबल पे आ गए और ठोकने लगे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप एक्शन लीजिए, उनको वो करिए, तो गलत उनका कृत्य था, फला है और प्रिविलेज नोटिस हम दे रहे हैं, तमाम चीजें, और हमारी जो किताब रखी थी, अब मैं बिल्कुल कूल माइंड से क्योंकि उसमें बड़ा सेंसिटिव वो रहता है कि क्या आप लेते हैं, तो मेरे किताब एक छोटी रूल बुक भी रखी थी, तो अपोजिशन के बहुत सीनियर मेंबर्स थे जो एक्स मिनिस्टर्स भी रहे थे, उन्होंने क्या किया, किताब उठा के और फाड़ के ऐसी फेंक दी हमारे जो सबोर्डिनेट ऑफिसर्स थे, और बड़ा हंगामा और तेज हो गया, तो और तेज हुआ तो फिर हमने कहा कि अब कोई जरिया नहीं है, इसको आप एडजॉर्न कर दीजिए हाउस को, लंच तक के लिए कर देते हैं एडजॉर्न, तो हाउस लंच तक एडजॉर्न हो गया। फिर जब हम बाहर निकले तो जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, दूसरे ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा कि यार कितना हंगामा था, तुम्हारे लिए कुछ हो जा रहा, तुम तो एकदम ऐसे दिख रहे थे जैसे कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा यही ये अध्यात्म की वजह से था, क्योंकि मैंने अपने आप को कूल डाउन रखा, ये राजयोग या उसको मैं जब भी सेशन इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो मैं मॉर्निंग में जरूर मेडिटेशन करके जाता हूं, सो दैट कि आप अपना बैलेंस बनाकर रख सकते हैं और बैलेंस के साथ अपने कर्तव्य का आप निर्वहन कर सकते हैं, और कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती जो अप्रिय हो या ऐसा डिसीजन नहीं हो पाता है जिससे कि आपके ऊपर आक्षेप आए, क्योंकि दोनों लोग हमारे लिए बराबर हैं, आज वो लीडर अपोजिशन है कल वो पावर में थे, तो दोनों का ईगो बहुत हाई रहता है, तो इस तरह की सिचुएशन डील करने के लिए, या आप लोगों को भी समय समय पर फील्ड में भी कई परिस्थितियां बनती हैं, तो ये बहुत मेडिटेशन हमारे काम आता है, या जो शिक्षाएं यहां दी बहुत काम आता है, ऐसी कई परिस्थितियां ऐसी। अभी मैं देख रहा था कि जो चैलेंजेस के बारे में एक सेशन था, तो जो बहन बता रही थी कि भाई आपको अगर जो ब्रेकर्स आते हैं रास्ते में, आपकी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, उस ब्रेकर पे आपको रुकना पड़ता है, स्लो डाउन होना पड़ता है, वो आपको स्पेस देने के लिए होता है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए होता है कि कोई चीज गलत हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसमें आप, या कोई आपको नहीं, आपका कोई डेडलॉक बन गया है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप थोड़ा समय ले लें। ऐसा ही एक सिचुएशन अभी कुछ दिन पहले ही थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थी, तो हमारे स्पीकर कोई एक डिसीजन लेना चाहते थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई ऑफिसर था सीनियर पोजीशन, तो उसको वो सीनियर बनाना चाहते थे और जो कैपेबल था, एबल था, उसको वो डाउन करने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कोई क्लू बनाया, फिर उन्होंने काफी ओपिनियन ली इधर उधर से और अपनी फाइल उन्होंने डायरेक्ट मंगा करके एक डिसीजन के लिए, लास्ट में उन्होंने हमको कहा कि हम ऐसा ऐसा ये करने वाले हैं, आपका क्या कहना है, तो हमने कहा कि सर ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो कैपेबल है और जो मेहनत कर रहा है उसको एकदम कर देंगे तो अच्छा मैसेज सेक्रेटरिएट में नहीं जाएगा, तो वो कहने कि नहीं वो सुलू ट्राइब है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, हमें कोई मैसेज देना है, ये है हुए, तो मैंने कहा ये सर मैं तो आई एम नॉट एग्रीड विद दिस, तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें, हमने कहा कि हम बताते हैं सोच के। अब उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना था, तो एकदम एक मैंने ऐसी ही कहानी सुनी थी कि दो चोर जो है वो राजमहल में घुसे और उन्होंने चोरी की। चोरी करने के बाद दोनों पकड़े गए तो राजा ने उनको मृत्युदंड दे दिया, डेथ पेनल्टी उनको दे दी। अब उसमें से ये हुआ कि भी कल जो है उनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, तो रात भर में उसने एक चोर ने सोचा कि हम इसमें कुछ टाइम गेन कर लिया जाए, कोई पॉज हमको मिल जाए। तो उसने कहा कि बिल्कुल हमको चढ़ा दीजिए, लेकिन मैं कुछ बात राजा से कहना चाहता हूं, वो हमको दो मिनट का। उन्होंने पूछा जाता है कि अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा मैं राजा से कुछ बात करना चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा ये है। तो उन्होंने कहा ठीक है, राजा को कब बुलाया उन्होंने दरबार में, उन्होंने कहा बताइए क्या। उन्होंने कहा राजा से कहा कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे पास एक कला है। बोले क्या कला है? बोले मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं, तो आप किसी भी युद्ध में जाएंगे तो उस घोड़े से आप अपनी विजय सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दूसरे उसने कहा कि क्या क्या बेवकूफी की बात कर रहा है, घोड़ा कोई उड़ सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कितना समय लगेगा? बोले 1 से 2 महीने। बोले घोड़ा उड़ नहीं सकता, मैं भी जानता हूं, लेकिन 1 से 2 महीने का जो समय है, हो सकता है परिस्थितियां बदल जाएं, हो सकता है राजा ही ना रहे, तो हम इसको कोप अप कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन थी ये मैंने सुनी थी, लेकिन आज जो यहाँ चैलेंजिंग जो बहन ने बताई वो बिल्कुल कोरिलेट कर रही थी। तो हमने उनसे स्पीकर से फिर लास्ट में उन्होंने शाम को पूछा कि भी क्या आपने सोचा? मैंने कहा हमने ये सोचा है कि अभी आप कॉन्स्टेंसी जा रहे हैं, आप हवाई है वहां, लौट करके जब आएंगे तो देन वी विल डिसाइड। अभी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि आपको आज ये ऑर्डर पास करना है। बोले ये ठीक है, मैं लौट के आता हूं तो फिर हम अपन बात करेंगे। तो फिर हमने एक बीच का रास्ता निकाला। तो कहने का मतलब इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं ये सब हमको इस राजयोग या अध्यात्म या इससे जुड़ने से भी कई बार सॉल्यूशन की तरफ ले जाती हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये सारे जो हमारी रिट्रीट है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। एक लास्ट बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक व्यक्ति था तो वो 30 साल की उम्र में उसने भगवान से कहा कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं पूरे संसार पर राज कर सकूं। फिर 8-10 साल कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने देश पर राज कर सकूं। फिर और 5-10 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा कि मैं अपने राज्य पर राज कर सकूं। अंत में वो आ गया कि मैं अपने क्षेत्र पर राज कर सकूं। लास्ट में उसने कहा कि भगवान अब इतनी ताकत तो दे कि मैं अपने ऊपर राज कर सकूं। तो भगवान ने कहा कि अगर ये वरदान तूने पहले मांगा होता कि स्वयं पर मैं राज कर सकूं तो आज तू संसार पर राज करने के लायक बन सकता था। और यही शिक्षा यहां दी जाती है कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल आप कैसे सकते हैं, सेल्फ का एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे चला सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी ये रही। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी यहां से एम्पावर होकर जा रहे हैं और मूल्यों के आधार पर हम अपना प्रशासन वहां चलाएंगे। यहां जो हमने शिक्षाएं ग्रहण की हैं उसके लिए हम इन सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा जो आंतरिक सशक्तिकरण हुआ है ये पूरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूं सभी के लिए। और हम सब व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहां हमको बुलाया गया और 2-3 दिन से जो हम हॉस्पिटलिटी यहां एंजॉय कर रहे हैं, हर प्रकार से सुख सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं, न केवल शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हम सशक्त हो रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे यहां बुलाने के लिए और स्नेह देने के लिए भी मैं हृदय से आभारी हूं। ओम शांति, जय हिंद।
बहुत सुंदर विचार भाई सामने रखे। और आप सबको बताना चाहेंगे हमारे अवधेश प्रताप सिंह भाई साहब पिछले 25 वर्षों से लगातार ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नियमित विद्यार्थी हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं और राजयोग की शक्तियों को उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया है, उसके आधार से उन्होंने अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर किया है। थैंक यू भाई साहब। और अभी इस समापन सत्र की वो सुंदर बेला आ चुकी है जब हम सब हमारी परम श्रद्धे राजयोगिनी आशा दीदी जी का सानिध्य प्राप्त करेंगे। सर्वोच्च प्रशासक परम पिता परमात्मा शिव भगवान और इस विश्व को प्रशासन की परिभाषा सिखाने वाले महातपस्वी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका फोटो आप सब सामने देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और हमारी दादियों ने इस यज्ञ को, इस संस्थान को कैसे सुचारू रूप से बिना टेंशन के साथ, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रभाव, बिना किसी लगाव और बिना किसी अभाव के साथ कैसे सुचारू रूप से चलाना है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ आकर पिछले दो दिनों से आप सबको बहुत ही हर तरह का सुख प्राप्त हो रहा है, मन का भी सुख है और भोजन रहना सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, सब संतुष्ट हैं। वाह, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ जो हमारे भाई चाहे भंडारे में है, चाहे आवास निवास में है, चाहे अकोमोडेशन में है, चाहे हॉल में, जो भी हमारे सभी भाई बहन सेवाएं दे रहे हैं, सवेरे 3:30 बजे से उठकर रात्रि तक निरंतर सेवारत हैं। उनकी सेवाएं आप सबने देखी, यहाँ कोई किसी को कह नहीं रहा है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है, कोई भाग दौड़ नहीं, शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से ये कार्य चल रहा है। तो सर्वोच्च प्रशासक परमपिता शिव परमात्मा ने यहाँ सभी के अंदर वो दिव्य संस्कार इस राजयोग और आध्यात्म के जरिए भरे हैं, और सर्वोच्च प्रशासक की बहुत सुंदर रचना जब भी हम आशा दीदी जी को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो कितना सुंदर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर है। आदरणीय आशा दीदी जी हम सबकी आदर्श मूर्त, प्रेरणा स्रोत और आज के सुप्रशासन की मिसाल है, क्योंकि आशा दीदी जी ब्रह्मा कुमारी संस्थान को कैसे मैनेज करना है वो मैनेजमेंट कमेटी में रहकर इतने भली भांति सुप्रशासन कर रहे हैं। तो आप सुप्रशासन की मिसाल हैं, प्रशासक वर्ग की, हमारे इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग की आप चेयरपर्सन हैं। परम आदरणीय श्रद्धे राजयोगिनी आशा दीदी जी को मैं बहुत ही आदर से, सम्मान से हम सबके अंदर शक्ति और ऊर्जा भरने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, और उसके पहले मैंने आशा दीदी जी के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं जो आप सबके लिए, आप सबके साथ शेयर करूंगी। आदरणीय दीदी जी, सुप्रशासन की पहचान है दीदी जी, व्यक्तित्व नहीं पूरा संस्थान है दीदी जी, सहज सरल और गुणवान है दीदी जी, प्रशासकों को गुणवान बनाना कमाल है ये दीदी जी की, और आप जैसा सब बने ये हम सब का अरमान है दीदी जी, हम सब का अरमान है। तो मैं कहूँगी कि आज आप अपने अनुभव से हम सब के अंदर वो शक्ति भरे, वो ऊर्जा भरे, जिससे हम और ज़्यादा चार्ज होकर यहाँ से जाएं। सम्माननीय दीदी जी,
आज का सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, मैं सोचती हूँ कि जितने सेशंस हमारे हुए एक से बढ़कर एक थे, तो अभी तो आप लोग सब अच्छे इक्विप हो गए होंगे, स्पिरिचुअलिटी से अच्छे इक्विप हो गए होंगे, हाँ जी है ना जी। अभी कुछ शेष रहा क्या कहेंगे, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो चीज हमने सुनी, हमें प्रिय लगी, तो जो प्रिय चीज होती है उसे अपनाया जाता है, ऐसे है ना। हमारे यहाँ बाल्यकाल से भारत में हमारी संस्कृति में सेवा का भाव है। आप बचपन को याद करें, बचपन में मंदिर में जाते हैं, छोटे बच्चे के हाथ से भी इसका भाग्य बने, इसके अंदर ये संस्कार बने हैं। घर में बच्चे होते हैं, मेहमान आए हुए होते हैं, तो हम लोग छोटे बच्चों को कहते हैं जाओ पानी का ग्लास लेकर के आओ। याद है ये सब सेवा के संस्कार बाल्यकाल से भरे जाते हैं। धीरे धीरे वो सेवा सेवा नहीं रह जाती, कहीं अहम आ जाता है, कहीं बॉसिज्म आ जाता है, कहीं और कोई चीज आ जाती है। उसका कारण बाल्यकाल में तो संस्कार डाले गए, आगे चल के उनको सस्टेन नहीं किया गया, और जो संस्कार सस्टेन नहीं किए जाएंगे, किसी बीज को आप पानी न दें, बीज बहुत बढ़िया है लेकिन अगर उसे पानी न दें वो बीज फलीभूत नहीं होता। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम आते हैं तो हमें चार सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। इन चार सब्जेक्ट्स में आपको संपन्न बनना है। वो चार सब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं? ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा राजयोग साधना, तीसरा दिव्य गुणों की धारणा और चौथा सेवा। ईश्वरीय सेवा नाम उसको ईश्वरीय सेवा। अब देखिए सेवा का महत्व कितना है, कितना महत्व है। ईश्वरीय सेवा हमारे आउटलुक को बदल देती है। और जब हम कहते हैं सर्विंग विद स्पिरिचुअलिटी, इसका अर्थ और कुछ नहीं है, सिंपल अर्थ है सर्विंग विद स्पिरिट। स्पिरिट क्या है? आप जो हैं और हम जानते हैं हम क्या हैं, हम ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति संपन्न है। ये हमारे गुण हैं, मूल गुण है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को वर्षा देता है, परमात्मा ने भी हम आत्माओं को जीवन जीने के लिए ये मूल गुण वर्षे में दिए हुए हैं। परंतु ये मूल गुण उपयोग में हम नहीं लाते, नहीं लाते। सेवा में समर्पण महता है। सेवा ऊपरी रीत से नहीं होती है, दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती है। हम लोगों से लोग पूछते हैं आपकी इतनी बड़ी संस्था है, आप समाज सेवा का क्या कार्य कर रहे हैं? आप स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले? हमारा उत्तर क्या है? ये सब कार्य दुनिया की तमाम इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं, लेकिन वह कार्य जो कोई नहीं कर रहा वह ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और वो कार्य क्या है? मनुष्य की मनसा का सशक्तिकरण, मन को, बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाए जो इतने चैलेंजेस हैं उनका सामना ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से, ट्रूथफुलनेस से कर सकें, मूल्यों के आधार से कर सकें और अच्छे समाज का निर्माण यूं कर सकें, ये कार्य ये ईश्वरी विश्वविद्यालय करता है। और आज इस मंच से मुझे बताते हुए गर्व अनुभव होता है, एक भी विद्यार्थी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है, एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार नहीं है, किसी भी प्रकार के, चाहे वो यूथ है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो हमारे भाई हैं, घर गृहस्थ है, गृहस्थ में रहने वाले अपने आप को विकारों से मुक्त करें और अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाएं, आपने कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी का ज्ञान लेने के पश्चात ये सुना नहीं होगा कि इनका डाइवोर्स हो गया, इनके घर परिवार में ये चल रहा है, नहीं। ये कार्य क्या सेवा नहीं है? हम रोटी कपड़ा मकान वो भी जरूरी है, वो सरकार भी करती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी करती है, बेशक करें, लेकिन जब तक आपने मन का सशक्तिकरण नहीं किया है, उनके अंदर इतना ईमान पैदा नहीं किया जो धनवान है, अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं कि वे इस प्रकार की सेवा में सहयोग दें, वो भी तो सेवा है। और फिर सेवा करके हम चाहते हमारा नाम हो, हॉस्पिटल है तो किसका हॉस्पिटल है, कावेरी हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल, सो एंड सो हॉस्पिटल, जब मुझे इतनी पब्लिसिटी, इतना नामाचार मिल रहा है तो सेवा कहाँ है इसमें? सेवा होती है निस्वार्थ भाव से, सेवा होती है निर्माण भाव से, निर्माण चित्त होकर के, सेवा होती है अनासक्त वृत्ति से, सेवा होती है निष्पक्षता से। भाइयों ने बताया संवेदनशीलता, रहम का भाव, सेवा में ये चीजें चाहिए। इसका नाम स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी और कोई चीज नहीं, जो आप है उसको अपने कार्य क्षेत्र में प्रदर्शित करें, उस अनुसार चलें, यही स्पिरिचुअलिटी है। जो भाईचारे की भावना है, सेवा में सीमाएं नहीं होती हैं। ये इस कास्ट की है तो ये इस कास्ट की है, नहीं, ये इनका है और ये इनका है, ऐसा नहीं। सेवा में कोई सीमाएं नहीं होती हैं। मैं आपको आंखों देखा दृश्य बताऊंगी। अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र 137 देशों में, और आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में, स्पेशली अमेरिका, यूरोप, यूके, इसमें कितना कलर, गोरे और काले का कितना, मैं कहूँ झगड़ा कहो या प्रॉब्लम कहो, कितनी अधिक होती है। परंतु यहाँ पर जब हम कॉन्फ्रेंस करते थे, 80s की बात है, डॉक्टर जेम्स जोना जो यूनाइटेड नेशंस के उस समय असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे, वे आए थे और उनकी सेवा में, वो ब्लैक थे, उनकी सेवा में एक वाइट था, सफेद रंग वाला वेस्टर्नर यूरोपियन था। लोग देख के हैरान हुए, एक ब्लैक की सेवा एक यूरोपियन कर रहा है। उससे पूछा गया, उसका उत्तर क्या था? आई लर्न टू सी ओनली द सोल, आई डोंट सी द स्किन। मैं स्किन को नहीं देखता, मैं आत्मा को देखता हूं। जब कोरोना था, सेकेंड फेज, उस समय इसको होश थी कौन क्या है? कोई होश नहीं थी। हमने सब अपनी लिमिटेशंस को, लिमिट्स को तोड़ दिया था। जहां मदद कर सकते थे, हर कोई मदद करने को तैयार था। ये हमारे कल्चर में है, परंतु हम इसको, व्याधि आई, प्रत्यक्ष किया, क्या बड़ी बात हुई, लेकिन इसको नेचुरली अपनी लाइफस्टाइल में हमें लाना होगा। आप प्रशासक, आपके हाथ में वो ताकत है जो आप ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स अपने लिए एकत्र कर सकते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूं और मैंने खूब अच्छी तरह से कोई भी भवन दिल्ली का, उद्योग भवन, कृषि भवन, जितने ये भवन है, निर्माण भवन आदि, कोई भवन खाली नहीं होगा जहां पर मैंने ये सेवाएं ना की हूं। एक बार नहीं, रोज का मेरा सिलसिला था, रोज का। और आप जानते मैं क्या देखती थी? गरीब आदमी गांव से चल करके आया हुआ है, अपना कोई काम कराना है, द्वार पर बैठा है, तुम्हारा काम आज शाम तक होगा, आज बेचारे दिलासे से बैठे हैं। और शाम को सहज भाव से कह देते हैं कि तुम्हारा काम आज नहीं हो सकता, तुम्हें फिर आना होगा। क्या हम सोचते हैं वो गरीब आदमी कहां से चला होगा, कहां वो खाएगा? अब वापस जाएगा तो कहां रहेगा? कितने दूर गांव से आया, कहां रात वो बिताएगा? कभी सोचते हैं? आंसू आते थे उन लोगों को जब मैं सुनती थी उनको कहते हुए, और वो बेचारों के चेहरों को मैं देखती थी, मुझे रहम आता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ब्लेसिंग्स, सेवा, वह जो भाई ने कहा, खुद को भी संतुष्ट करें और दूसरों को भी संतुष्टि हो। मैं इससे भी बढ़ के एक बात कहूंगी, प्यारे भाइयों और बहनों, सेवा वह जिससे दिल से दुआएं आपके लिए निकले, वो है सेवा। आप भी दुआएं दें और वो आपको भर भर कर की दुआएं दें। हम घर लौटते हैं, घर लौटने से पहले अपने से इतना ही पूछ लें कि आज मैं कितनी दुआएं लेकर के लौट रहा हूं, कितनी दुआएं लेके लौट रहा हूं, पर्याप्त। इसी रीति से एक चीज जो सेवा में है, हमारी दादी जी, हमारे पिताश्री जी जो फाउंडर रहे, सेवाधारी, हमेशा बाबा अपन को कहते थे, सेवाधारी, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। दादी जी कहती थी, मैं सेवाधारी हूं। ये जो कॉन्सेप्ट, इसमें एक संस्कार हमें अपने अंदर उजागर करना होगा। आप देखिए हर चीज जो हमारे सामने है, इट इज मेंट टू गिव. ये माइक अपने लिए नहीं है, आवाज फैलाने के लिए. ये लाइट अपने लिए नहीं है, हमारे लिए. चेयर अपने लिए नहीं है, हमारे लिए. इट इज मेंट टू गिव. प्रकृति अपने लिए नहीं है, हमारे लिए. एवरीथिंग गिव्स. मैं क्या कर रही हूं, मेरी अप्रोच गिविंग की है या मेरी अप्रोच एक्सप्लॉयटेशन की है, कि जितना मैं ले सकूं ले लूं? नहीं. इस कॉन्फ्रेंस से हम ये धारणा अपनी बनाएं, आई हैव टू गिव, गिव, गिव एंड गिव. आप कहेंगे क्या दें? सच्चाई की बात यह है, आज किसी को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज चाहिए, शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं. सबको चाहिए. हमारे ट्रांसपोर्ट की ओर अगर आप ध्यान देंगे, ट्रक्स के पीछे क्या लिखा होता है? बुरी नजर वाले. आगे बोलना नहीं चाहते ना? वेरी गुड. मैं बहुत खुश हूं कि आप आगे बोलना नहीं चाहते हैं. दिस इज स्पिरिचुअलिटी. इसको कहते हैं बुरी नजर वाले, तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो. व्यक्ति कुछ भी करे, अगर हमने मन में ठान ली है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा. मैंने उसको रिटर्न में अच्छा ही देना है, रिटर्न उसका अच्छा ही से देना है, शुभ भावना, शुभ कामना. और एक काम कर सकेंगे, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, और वो है मुस्कुराना. पॉसिबल? पॉसिबल? आवाज नहीं आ रही. पॉसिबल? आप अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, आप अपने घर में एंटर करते हैं और कुछ नहीं कर सकें, अगर हम मुस्कुरा दें, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, आप एटमॉस्फेयर को बदल रहे हैं, एटमॉस्फेयर को आप रिचार्ज कर रहे हैं. और ये कौन चाहता है गर्म एटमॉस्फेयर में रहना? मुस्कुराओ. हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, उनका ये सेंटेंस होता था सबके प्रति, और आपको भी मैं एक सौगात के रूप से देना चाहूंगी. दादी जी कहते थे, कुछ भी हो जाए परंतु खुशी ना जाए, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए. खुशी आपकी प्रॉपर्टी है. आपके पेन को, आपके मोबाइल को कोई ऐसे ही उठा के चल दे तो आप उसको लेंगे ना? और आपकी खुशी आपकी सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, चैलेंजेस, व्यक्ति आपको पोक करके और आपकी खुशी गायब कर दें, ये तो कोई बात ही ना हुई ना. आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों दे रहे हैं? ये आपका वर्षा है, प्रॉपर्टी है. ये चीज अपने साथ लेके जाएंगे. सारे दिन में एक बात और कहूंगी, 5 बार 6 बार, कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन जितनी बार आप कर सकें, बीच बीच में अपने आप को साइलेंस मिली जाए. बीच बीच में मेरा अनुभव है, साइलेंस में जाने से आप अपने आप की सेवा करते हैं. क्यों? आपका मन स्टेबलाइज्ड होता है, उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। जो संकल्प चल रहे होते हैं स्टेबलाइज हो जाते हैं, और उस समय इंट्यूशन काम करती है। जो आपके मन और चित्त में भी नहीं होगा वो आइडिया उस समय फ्लैश करेगा। किसी ने कहा था, बी द सोल्यूशन, लुक फॉर सोल्यूशन। आपको इंट्यूशन जो आपकी अपनी है, ऐसा नहीं कोई विशेष लोग होते हैं जो इंट्यूटिव होते हैं, नहीं, आप सब इंट्यूटिव हैं। गिव इट अ चांस, समय दे उसको और वो मिलेगा साइलेंस में। ठीक है, इन शब्दों के साथ हमारी कॉन्फ्रेंस, मैं सच में कहूंगी इट वॉज वेरी एनरिचिंग, एग्री, वेरी एनरिचिंग। और बहुत बहुत कितने हैं जो मोटिवेटेड हुए कि मैं आज से ये काम शुरू करूंगा, या इस प्रकार से मैं हाथ खड़े करे तो ऊंचे हाथ खड़े करिए, वेरी गुड। और जो हाथ नीचे हैं आप लोग उनको मोटिवेट करिएगा, दाएं बाएं देख के। कम से कम दो चीजें तो आप ले जाओ, दो चीजें, ज्यादा नहीं, दो चीजें। शुरुआत थोड़े से करिए, जन्मते जाम कोई नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करते हुए सब कुछ हो जाता है। आज दो करेंगे कल वो चार होंगी, चार के बाद हो सकता है तीन हो जाए, तो भी डरिए और घबराइए नहीं। आपने चींटी देखी है ना, चींटी से कितनी लर्निंग है। चींटियां जब चढ़ती हैं, आप चींटी को नीचे उतार लीजिए, फिर वो क्या करेगी, फिर चढ़ेगी, फिर उतार दीजिए, फिर चढ़ेगी, यू ऑब्जर्व। और जितना आप उसको उतारेंगे चार पांच बार करेगी, फिर क्या करेगी, रास्ता बदल लेगी, लेकिन चढ़ जाएगी एंड यू एंजॉय। इसी रीत से ऐसा होगा। आप कहते हैं बहन जी माउंट आबू में बड़ा अच्छा था, कुछ नहीं था तो हम बड़े अच्छे थे, अभी कार्य क्षेत्र में आए तो मुश्किल है। नहीं, उसी के लिए तो हम यहाँ पर आए थे। लेकिन अपने आप से फर्म डिटर्मिनेशन करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। हिम्मते मर्दे मदद दे खुदा। आप एक कदम बढ़ाएंगे सामने से 10 कदम आएंगे, और वी विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, ये अपन को दीजिए विजय का तिलक। मैं विजयी आत्मा हूं, हारी हुई नहीं हूं, मैं विजयी आत्मा। रोज अपन को विजय का तिलक दीजिए, विजयी आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं। विजय का आवाहन करेंगे तो विजयी रहेंगे, हार का आवाहन करोगे तो गड़बड़ होगी, लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है। विजय, इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आपके भाग्य की मुबारक। और मैं तो हरीश भाई को कहूंगी, हरीश भाई इतने समय इतनी कॉन्फ्रेंसेस जो हुई, आप एक ऐसा कार्यक्रम बनाइए जो पिछले 5-10 साल में जो हमारे विशेष अतिथि आए उन सबकी रिट्रीट यहाँ रखें। एक कार्यक्रम आप इस तरीके का आयोजित करें, ठीक है, ठीक है, फिर आएंगे। ओके, ओम शांति।
दीदी बोल रहे थे और हम सबकी ज्ञान रत्नों से झोलियाँ भरती जा रही थी, भरती जा रही थी। और दीदी जी ने हम सबको 5 बड़े महामंत्र दिए। बहुत सुंदर बात दीदी ने बताई कि हम सब जीवन में बहुत कुछ जोड़ रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस में जमा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप ये सीख लेकर जाएं कि दुआएं लेना है और दुआएं पीछे से आवाज नहीं आई, दुआएं लेना है और दुआएं देना है, और हमेशा देने का भाव, दातापन का भाव हम अपने जीवन में रखें, जीवन में मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराकर अपने जीवन को जिएं। और एक बहुत सुंदर बात दीदी जी ने बताई कि हमेशा हमेशा भला करते रहें तो लाभ मिलता रहेगा। आप लाभ को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? जब लाभ लिखते हैं तो भला, तो लाभ तो अपने आप हो जाएगा अगर हमारे अंदर भला करने का भाव आ जाए। और लास्ट में दीदी जी ने जो महामंत्र दिया, साइलेंस पावर। हम लोग जब बहुत अपने अपने शहर में निकलते हैं, बीच बीच में ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं, कितनी भी स्पीड हो लेकिन गाड़ी को हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। हमारे संस्थान में ट्रैफिक कंट्रोल मेडिटेशन सिखाया जाता है, दिन में कई बारी 1-2 मिनट के लिए सभी बीके भाई बहन रुककर अपने आप को साइलेंस की ओर ले जाते हैं, खुद से खुद को जोड़ते हैं, खुद को खुदा परमात्मा से जोड़ते हैं और उस शक्ति को प्राप्त करते हैं कि आगे और ज़्यादा ऊर्जावान होकर हम अपना कार्य कर सके। तो हम सब दीदी के बताए हुए इस मार्ग को, इन टिप्स को अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे। हम सब जोरदार तालियों से दीदी जी को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं और शुक्रिया करते हैं। बात चल रही है सेवा की, हम अपने जीवन में सेवा भाव लाएं। इतना सुंदर ये जीवन है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी। एक शहर में एक मंदिर बन रहा था, बड़ा सा मंदिर था, पत्थरों से उसका निर्माण हो रहा था, दूर दराज से पत्थर आ रहे थे, बहुत सारे मजदूर कारीगर काम कर रहे थे। एक बार एक राहगीर वहां से गुजरे, उन्होंने एक मजदूर से ऐसे ही पूछ लिया, भैया क्या कर रहे हो? कहा, दिखाई नहीं देता क्या कर रहा हूं, किस्मत खराब है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आगे बढ़ गए, अच्छा सा जवाब नहीं मिला, आगे बढ़े, दूसरे से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? कहा, क्या करें साहब, मजबूरी है, परिवार को चलाना है, भरण पोषण करना है, तो ये पत्थर फोड़ रहा हूं। तब भी संतुष्टता वाला जवाब नहीं मिला, आगे बढ़े, तीसरे मजदूर भाई जो कारीगर बड़ी तल्लीनता से काम कर रहे थे, उनको पूछा, भैया क्या कर रहे हो? कहा, एक सेवा करने का मौका मिला है, भगवान का मंदिर बन रहा है और उस मंदिर में थोड़ा सा अपना श्रम करने का, सहयोग देने का, सेवा करने का अवसर मिला है, वो कर रहा हूं। तीनों काम एक ही कर रहे हैं लेकिन तीनों की सोच, तीनों का भाव, मन की भावना अलग अलग है। आप सबको किसका आंसर पसंद आया होगा? तीसरे वाले। हम सब जीवन जी रहे हैं, बहुत अपने ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, जीवन जीते हुए अगर यहाँ से ये सेवा भाव लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की दुआओं के आप पात्र बनेंगे। और अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, समाप्ति में हमारे आदरणीय देवी भ्राता, राजयोगी भ्राता हरीश भाई जी आभार व्यक्त करेंगे। वैसे तो हम कहेंगे कि हम सबको हरीश भाई जी का आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। जब भी भाई सबको देखते हैं तो लगता है आपका चेहरा सदा खुशहाल, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया फिर भी चेहरा सदा खुशहाल, वाणी बेमिसाल, और इतनी सुंदर कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग आपने की, आपकी तो है बड़ी कमाल। ऐसे हमारे हरीश भाई जी जो पिछले 45 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में हैं और पूरे समर्पण भाव से सेवा में हैं। आप मुख्यालय संयोजक हैं प्रशासनिक सेवा प्रभाग के और पिछले कई वर्षों के अंतर्गत आपने संपूर्ण भारतवर्ष में सुप्रशासन एवं मूलनिष्ठ प्रशासन हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
इस सम्मेलन के सूत्रधार भी विशेष रूप से आप ही रहे हैं। आप अनेक विशेषताओं से संपन्न हैं और ये बाबा का घर ज्ञान सरोवर, जिसे हम प्यार से मधुबन भी कहते हैं, आप मधुबन भूमि के फरिश्ते हैं, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, सुप्रशासन की सारी स्कीम बनाकर लाए हैं आप, और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सफलता की देने आए हैं आप। तो ऐसे हमारे हरीश भाई जी को मैं बहुत ही आदर से आमंत्रित करूंगी कि आप आए और अपने भाव रखें। भाई साहब,
ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। मंच पर विराजित महान आत्माएं और सभा में उपस्थित प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब आप लोग आए तो आपका स्वागत हम नहीं किया, और अब जब समापन हो रहा है तो आप सभी का धन्यवाद करने का भी सौभाग्य हमें ही मिल रहा है। बहन जी बता रही थी इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, हरीश भाई जी का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन रियल में धन्यवाद किसका करना चाहिए, किसका करना चाहिए, किसका करना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा का, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, और हमारी परम आदरणीय दादियां वगैरह जिन्होंने ये संस्था का स्थापन किया है और इतना आगे बढ़ाया है, और साथ ही साथ हमारे मंच पर विराजित हमारे सभी महानुभावों का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। हम देख रहे थे कि ज्ञान सरोवर में आप सभी आए, ज्ञान वर्षा तो हो रही है लेकिन लग रहा है कि ज्ञान का सागर ही उमड़ पड़ा है, और सवेरे से लेकर के आप लोग सारे दिन में अगर देखें कितना ज्ञान मिल रहा है, कितना मिल रहा है। तो इतना ज्ञान देने वाले जो ज्ञानी तो आत्माएं, उनके प्रति धन्यवाद अदा करना हमारी फर्ज है। तो मैं आपसे यही निवेदन है कि आप बस ताली का सहयोग देंगे और मैं केवल नाम लूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले परम आदरणीय आशा दीदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मंच पर विराजित हमारे आदरणीय भ्राता अवधेश प्रताप सिंह जी, सीताराम मीना जी बजाते थे, भ्राता एस मुखोपाध्याय जी और एके धीर साहब जी, और हमारी प्रिय रीना बहन जी के लिए जोरदार थाली बजाइए, क्योंकि मेरे पास केवल 3 मिनट का या 5 मिनट का टाइम है, टाइम बहुत हो गया है, और अभी आप सबके लिए एक बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम भी है 9 से 10 बजे, और हमारे पास टाइम कम है, इसलिए आपका जितना सहयोग मिलता है उतना हमारा कार्य सहज हो जाता है। अभी आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, हमारे बीके गाइड भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए, हमारे विंग के कई बड़ी बहनें आई, अच्छे अच्छे स्पीकर्स आप सबके सामने आए, उन सब के लिए, हम किसी का नाम शायद ना ले पाए लेकिन सबके लिए दिल से ताली बजाएंगे, क्योंकि आप सबको ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने अभी तक सब चीजों पर टैक्स लगाया लेकिन 2 चीज पर अभी तक टैक्स नहीं लगाए हैं। किस चीज पर? एक तो ताली बजाने पर, और दूसरा मुस्कुराने पर। दीदी कह रही थी ना कि भाई मुस्कुराओ, तो ये 2 चीजों में फ्री है, इसमें कोई खर्चा लगने वाला नहीं है। तो हमारे ज्ञान सरोवर के भाई बहनों ने कितनी अच्छी सेवा किया, भोजन अच्छा दिया, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया, रहने की व्यवस्था किया, हॉल में भी देखो कितनी सजावट किया, साउंड वाले, वीडियो वाले, और आप सबको ये भी बताकर हमें खुशी हो रही है कि जो भी ये प्रोग्राम हुए वो पीएम टीवी में, अवेकनिंग टीवी में लाई जा रहा है, यूट्यूब में लाई जा रहा है, और आप सभी के चेहरे
बाहर वाले देख रहे हैं, बीच बीच में आपको भी दिखाते, तो ऐसे हमारे जो भाई है इतनी मेहनत कर रहे उनके लिए तो हमारा धन्यवाद पड़ता है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप सब बार बार आए। दीदी ने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो सब लोग आते ही रहे। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किन शब्दों में धन्यवाद करें आपका, किन शब्दों में धन्यवाद करें आपका। आप यहाँ बार बार आए, आओ हम सब मिलकर ये भारत को फिर से स्वर्ग बनाएं, भारत को फिर से स्वर्ग, क्योंकि परमात्मा का भी यही लक्ष्य है। भले अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं ना यही भारत भूमि स्वर्ग थी, सत्युग था, सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग में आ गए, लेकिन कलयुग के बाद फिर से सत्युग होना ही है। और वो परमात्मा इस सृष्टि पर इसीलिए गीता के वायदे के अनुसार जो ये वायदा दिया था ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसी वायदे के अनुसार इस सृष्टि पर आकर के निराकार ज्योति स्वरूप साकार माध्यम के द्वारा इतना अच्छा ज्ञान देकर हजारों लाखों भाई बहनों के जीवन में पॉजिटिव चेंज ला रहे ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा। और यही सच्चे अर्थ में ज्ञान की सच्ची गंगाएं हैं। और इन बहनों ने पूरे न केवल भारत लेकिन विश्व के अंदर लाखों भाई बहनों के जीवन को परिवर्तन किया है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप सभी भाई बहनें भी यहां से जो भी सुना है थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में धारण करें, और जहां से भी आए वहां सेंटर है। 24 घंटा भगवान ने हमें दिया है, हम केवल आधा पौना घंटा नहीं निकाल सकते, वो भी अपने लिए। 23 घंटा भले आप सब कुछ करो, अपने लिए थोड़ा तो समय निकाले अपनी उन्नति के लिए। दूसरों के लिए हम सब कुछ करते, हमारे लिए क्या करते। तो आधा पौना घंटा भी अगर हम मेडिटेशन करते, आध्यात्मिक ज्ञान सुनते, उससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। ये हमारा अनुभव है। बहन जी कह रही थी इतना अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन हमारे को टेंशन नहीं होता है। क्यों टेंशन नहीं होता है? क्योंकि हमें यहाँ यही सिखाया जाता है कि कुछ भी काम करो ट्रस्टी बन के करो, सेवा भाव से करो, प्यार से करो, नम्रता से करो, निर्माण भाव से करो। तो यहां भी आप सभी देखो भाई बहनों को देख रहे हैं ना, सबके चेहरे देख रहे हैं, इतने खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज अपने जीवन में अपनाई है। इसलिए हम कोई भी कार्य तो हम भी करते हैं। आप प्रशासन का कार्य करते हम लोग नहीं करते, हम भी करते, लेकिन टेंशन नहीं, खुशी खुशी से और सेवा भाव से करते। तो यही चीज यहां से अगर आप सीख के जाएंगे तो आपके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, हर जगह हेल्थ भी अच्छी होगी, वेल्थ भी होगा और हैप्पीनेस भी अपने जीवन में रहेगा। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। बहुत बहुत दिल से आप सभी का धन्यवाद है। आप सभी पधारे, इतना समय निकाल करके आए, फिर से आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद है। ओम शांति।
आदरणीय हरीश भाई साहब का भी हम सब जोरदार तालियों से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अभी मैं परम श्रद्धे आदरणीय दीदी से, आशा दीदी जी से आग्रह करूंगी कि मंचासीन हमारे सभी सम्मानित मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भेंट करें। परमात्मा के घर की शॉल छत्र छाया के रूप में आप सबको मिलेगी। और अभी आप सब ने पिछले 2 दिनों में यहाँ जो भी सुना है, अमृत पान ज्ञान का सागर आपने पाया है, आपसे यही कहूँगी कि आप सब उसको लेकर जाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारे अवधेश भाई जी के लिए। एक छोटी सी बात आप सबके साथ शेयर करूँगी। एक ऑफिस से एक भाई अपने घर पहुंचते हैं, उनकी युगल, उनकी धर्म पत्नी जी उनके लिए चाय लेकर आती हैं, चाय टेबल पर रखती हैं। भाई साहब सीताराम मीना जी को भी बाबा के घर की शॉल प्राप्त हो रही है। आप सब तालियों से सम्मान और स्वागत करेंगे। मुख्य उपाध्याय भाई साहब जो भिलाई से हैं, उनको भी ईश्वरीय सौगात प्राप्त हो रही है। और हमारे आदरणीय भ्राता धीर साहब, आपको भी दीदी जी के द्वारा ईश्वरीय सौगात और प्रभु प्रसाद प्राप्त हो रहा है और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो जो मेरी बात है मैं पूरी कहूंगी कि उनकी धर्म पत्नी जी ने चाय लाकर रखी और उनकी छोटी सी बच्ची जो लगभग 3-4 साल की थी चीनी उठाकर उनकी चाय में डालना शुरू करती है। 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, पापा का ध्यान नहीं था। थोड़ी देर बाद भाई सब का ध्यान गया कि ये बच्ची उठा उठा कर इसमें चीनी डाल रही है। उन्होंने कहा बेटा बंद करो, ये चाय बहुत मीठी हो जाएगी, इतनी सारी चीनी इसमें डाल दी। बच्ची ने इतना सुंदर जवाब दिया, कहा पापा अभी तो सिर्फ डाली है, जब आप इसको मिलाएंगे हिलाएंगे तब ये चाय मीठी होगी। ज्ञान सरोवर में पिछले 2 दिनों से आप सबके अंदर ज्ञान की चीनी बहुत ज्यादा डाली गई है। अब सब आप जाकर उसको क्या करेंगे, सेंटर पे जाकर उसको और हिलाएंगे और मिलाएंगे, तो आपका जीवन बहुत मधुर होगा। इन्हीं मधुर शुभकामनाओं के साथ हम 2 मिनट परमात्मा की ध्यान में बैठेंगे और आप सबसे एक आग्रह है कि आप योग के बाद जाकर फिर तुरंत ही भोजन करके यहाँ पहुँचेंगे और बहुत सुंदर एक कार्यक्रम रखा गया है, उसका लाभ उठाएंगे, जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँचें। और सवेरे के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है, कल सवेरे 6 बजे का जैसे सेशन होता है एक्सरसाइज का, वो कंटिन्यू रहेगा, और 6:30 से 8 बजे जो राजयोग शिविर है वो भी कंटिन्यू रहेगा। और कल दिन में आपका साइट सीन का टाइम है तो आप साइट सीन करेंगे, और रात्रि को 9 से 10 बजे के बीच आप सबके अनुभव यहाँ सुने जाएंगे, तो रात्रि का भी कल सत्र रहेगा 9 से 10 का। अभी हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे, 2 मिनट उनकी याद में बैठेंगे। ओम शांति, थैंक यू।